तो आज से हम भक्ति रसामृत सिंधु का 6वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। भक्ति कैसे की जाए, सनातन गोस्वामी जो कि श्री रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था हरि भक्ति विलास। और ये ग्रंथ उन्होंने सारे वैष्णवों के लिए बनाया ताकि सारे वैष्णव जाने कि शास्त्रों के क्या विधि विधान है भक्ति करने के लिए, भक्त का रहन सहन कैसे होना चाहिए, भक्त का आचार विचार कैसे होना चाहिए, भक्त को भक्ति किस तरह से करनी चाहिए, भक्ति के विभिन्न अंग कौन से हैं, ऐसे कौन से विधि हैं, निषेध हैं जिनका पालन भक्तों को अच्छी तरह से करना चाहिए, कौन से महत्वपूर्ण विधियां हैं, कौन से उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, अर्चक विग्रह की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये सारे चीजों के बारे में श्री सनातन गोस्वामी ने बड़े विस्तार में हरि भक्ति विलास में वर्णन किया है। ये ग्रंथ वैष्णवों के लिए महत्वपूर्ण है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद जी ने भी हरि भक्ति विलास से महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं उनको लेकर अपने ग्रंथों में उन्होंने अच्छे अच्छे उपदेश हमारे लिए दिए हैं। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी मैंने तो कई ऐसे विधि विधानों का वर्णन किया है, लेकिन उनमें से केवल जो महत्वपूर्ण हैं, जो मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण हैं, प्रसिद्ध हैं, ऐसे नियमों को मैं यहां लिख रहा हूं। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति में दो चीजें होती हैं, एक है मूलभूत सिद्धांत और दूसरा है विस्तार। तो बीच में पढ़िएगा कोई। इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख हैं जिनका उल्लेख वहां से शुरू कीजिए, पहले ही पैराग्राफ पहले ही पेज में।
इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख हैं जिनका उल्लेख श्री रूप गोस्वामी हम सबों के लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं।
मतलब नियम, जो महत्वपूर्ण नियम है उनका उल्लेख करने जा रहे हैं।
इस कथन का भाव यह है कि श्री रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, पर उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते। उदाहरणार्थ एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए, किंतु वह अपने गुरु के आदेशों का किस तरह से पालन करता है यह उसका विस्तार माना जाता है। यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और यह आदेश अन्य किसी गुरु के आदेशों से भिन्न है तो इसे विस्तृत सूचना कहा जाएगा, लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वत्र अच्छा है, भले ही विस्तार पृथक पृथक हो। श्री रूप गोस्वामी यहाँ विस्तार में न जाकर हमारे समक्ष केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं।
तो अभी अंतर है इन दोनों में, एक है मूलभूत सिद्धांत, अंग्रेजी में बेसिक प्रिंसिपल्स कहते हैं, और दूसरे है विस्तार, डिटेल्स। और इसके लिए उदाहरण प्रभुपाद जी क्या दे रहे हैं, मूलभूत सिद्धांत और विस्तार के बीच में अंतर, यहां अभी अभी पढ़ा ना परीक्षित ने, गुरु स्वीकार करना ये एक मूल सिद्धांत है, परंतु विस्तार क्या है, आदेशों का पालन करना यह भी एक मूल सिद्धांत है, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग शिष्य कैसे गुरु के आदेश का पालन करते हैं वो विस्तार है, क्योंकि एक ही गुरु होंगे जो कि अनेक शिष्य अलग अलग शिष्यों को अलग अलग आदेश दे सकते हैं, या अनेक गुरु जो हैं वो अपने अपने शिष्यों को अलग अलग आदेश दे सकते हैं, तो ये विस्तार है। समझ लीजिए एक गुरु है, उन्होंने किसी एक को कहा कि आप वृंदावन में रहो, दूसरों को कहा आप वृंदावन छोड़ के चले जाओ। तो सिद्धांत क्या है, वृंदावन में रहना या नहीं रहना?
गुरु का आदेश।
सिद्धांत है गुरु का आदेश। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामियों को वृंदावन भेजा, आदेश दिया कि वहां जाके आप रहना। और जब जगदानंद पंडित यहां आना चाहते थे तो उनको क्या कहा उन्होंने, किसी को पता है? केवल 3-4 दिन रहना, और वो भी सनातन गोस्वामी के साथ में रहना, और फिर चले आना। तो हालांकि शास्त्र में कहा गया है कि वृंदावन का वास इतना महत्वपूर्ण है, चैतन्य महाप्रभु ने ही तो शिक्षाएं दी थी रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, कि वृंदावन का महात्म्य क्या है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने ही जगदानंद पंडित से कहा 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना। तो यह है विस्तार। लेकिन मूल सिद्धांत क्या है कि भगवान या गुरु के वचनों का पालन करना। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं इस भक्ति रसामृत सिंधु में केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करने वाला हूं। ठीक है, तो अभी उन्होंने विशेष करके 64 जो प्रमुख नियम है, विधि विधान है, उनका वर्णन किया हुआ है। तो ये चार्ट है क्या, चार्ट आप लगा सकते हैं जो वो 64 नियमों का। तो पहले हम देख चुके हैं कि श्रील रूप गोस्वामी ने साधन भक्ति की परिभाषा दी थी। किसी को याद है वो श्लोक, साधन भक्ति का वर्णन याद है? कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधना भिदा। क्या मतलब है इसका, साधना भिदा? ये साधना भक्ति क्या है? सबसे पहले कृति साध्या, कि ये इंद्रियों के द्वारा किया जाता है। तो किस प्रकार से इंद्रियों के द्वारा ये किया जाता है, इसका वर्णन इस अध्याय में पाया जाता है। ठीक है, इंद्रियों से हमें भगवान की सेवा करनी है, लेकिन कैसे करनी है, क्या सेवा करनी है, किस प्रकार से करनी है, इस वर्णन अभी इस अध्याय में हम सुनेंगे। तो आइए, ये जो 64 अंग हैं भक्ति के, या 64 नियम हैं जिनके बारे में रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है, वो इस प्रकार से हैं। पहले जो 20 अंग हैं, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये भक्ति के प्रवेश द्वार हैं। भक्ति में प्रवेश करने के लिए ये एक द्वार है, प्रवेश द्वार। और इन 20 अंगों में से पहले जो 10 अंग हैं, उनसे भक्ति का वास्तविक प्रारंभ होता है। और ये 10 अंग जो हैं, ये हैं प्रवृत्ति, अर्थात वो नियम या विधान जिनको करना चाहिए। आप जानते हैं ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति क्या है? जो करने चाहिए। निवृत्ति,
निषेध।
विधि और निषेध, तो ये विधि रूपक हैं। हम विधि और निषेध के बारे में पहले भी सुन चुके हैं, है ना, याद है आपको, कि हमारे मन से, हमारे शरीर से, हमारे वचनों से भगवान की सेवा करनी चाहिए, और दोनों विधि और निषेध। साधन भक्ति के की चर्चा जब हो रही थी उस समय ये बात भी आई थी। तो ये प्रवृत्ति विधियां हैं जिनको करने से भक्ति बढ़ जाती है। तो ये पहले 10 अंग ये भक्ति के प्रारंभिक अंग माने जाते हैं। और इनमें से भी जो पहले 3 हैं, मतलब इन 64 अंगों के सबसे पहले 3 जो हैं, वो भक्ति के प्रधान अंग माने जाते हैं। अर्थात इनके बिना भक्ति नहीं हो पाएगी, या भक्ति में की सफलता हम को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और फिर अन्य 10 जो हैं, पहले 20 अंगों में से अन्य 10 वो निवृत्ति हैं या निषेध हैं। या इनसे हमें बच के रहना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से। अगर इन निषेधों का पालन करेंगे तो हमारी भक्ति सही सलामत रहेगी। अगर इन निषेधों का पालन हमने नहीं किया तो भक्ति में ये बाधक कार्य बन जाएंगे। तो ये पहले 20 अंग हुए, उसके बाद कितने अंग रह गए? 44 अंग रह गए, क्योंकि पूर्ण मिलाकर 64 हैं, तो 44 अंग रह गए। पहले 44 में अंत आखिर के जो 44 अंग हैं, उनमें से जो आखिरी 5 हैं, 60 से लेकर 64, ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ अंग माने जाते हैं। इन 5 चीजों को करने से विशेष करके बहुत लाभ मिलता है। इसके बारे में हम अंत में जाके, इस अध्याय के अंत में हम देखेंगे कौन से हैं ये 5 अध्याय, 5 अंग, ठीक है? तो इसको आप याद रखिएगा, ये 64 अंगों का वर्णन। अब इस अध्याय में श्रील रूप गोस्वामी इन 64 अंगों का केवल उल्लेख मात्र कर रहे हैं, और फिर 7वें अध्याय से हर एक अंग का वो विस्तार में चर्चा करेंगे, शास्त्रों से प्रमाण देकर उसकी व्याख्या करेंगे वो हर एक अंग के बारे में। आप सबने लिख लिया इसको? तो अगर ये पहले 10 जो अंग हैं, जो भक्ति के प्रारंभ हैं, इनको अगर कोई भक्त अच्छी तरह से करेगा तो भक्ति में वो प्रगति कर पाएगा। और जो बाद में आने वाले 10 हैं, उनको भी अगर करेगा तो और भी सुदृढ़ अवस्था में साधन भक्ति में स्थित हो जाएगा। इनको नहीं करने से वो साधन भक्ति में प्रगति अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपने लिख लिया? अभी पढ़िए 64 कौन से, जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहला पढ़िए।
हमारे गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, गुरु द्वारा दीक्षित होकर वैसे भक्ति करना सीखना, श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना।
तो ये कौन से हैं 3? प्रधान अंग माने जाते हैं ये पहले 3। फिर से पढ़िए कौन से हैं ये 3 प्रधान अंग।
गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना, श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेश का पालन करना।
तो ये 3 नहीं होंगे तो कैसे भक्ति हो सकती है? इसलिए प्रधान माने जाते हैं। ठीक है, आगे 4 से आगे।
गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्य के पदचिन्हों पर चलना, कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना, भगवान कृष्ण की पुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करना।
थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए ताकि हर एक आइटम को, अंग को जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा उसके बारे में हम सोचें। ठीक है,
कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्याग करना चाहते हैं। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना चाहते हैं।
जैसे किसी को भी प्रसन्न करना है तो उस व्यक्ति के प्रसन्नता के लिए हमें किसी चीज को त्यागना चाहिए, किसी चीज को स्वीकार करना चाहिए। जिस व्यक्ति को हम प्रसन्न करना चाहते हैं उसकी प्रसन्नता के लिए हमें ऐसे भी कोई चीजों को त्यागना पड़ेगा जो हमें पसंद है, और ऐसी कभी कभी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो हमें पसंद नहीं है। तो ये है प्रेम का लक्षण। इसलिए यहां प्रेम और लक्षण में जो संबंध है इसके बारे में बताया गया है कि हमें भगवान की संतुष्टि के लिए किसी भी ऐसे चीज को, भोग आदि को हमें त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए। आगे 7वां।
द्वारका या वृंदावन जैसे की पूजा करना।
अब ये 10वें, वास्तव में अब अगर रूप गोस्वामी के ग्रंथ को पढ़ेंगे तो इसमें और कई भी वस्तुएं हैं जिनका वर्णन है। यहां तो केवल अश्वत्थ वृक्ष का उदाहरण दिया हुआ है, परंतु और भी हैं जिनका वर्णन आगे करेंगे प्रभुपाद जी। आने वाले अध्यायों में प्रभुपाद जी बतलाएंगे कि अश्वत्थ वृक्ष के साथ में और क्या है। साथ में आमल की वृक्ष है, तुलसी है, गाय है, ब्राह्मण है, वैष्णव है। तो कई बार जब भक्ति पढ़ते हैं ना कि हमें केवल अश्वत्थ वृक्ष की उपासना करनी चाहिए, तो सोचते हैं कि केवल अश्वत्थ है। ऐसा नहीं है, अश्वत्थ के साथ और भी बहुत कुछ है। तो इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा ठीक, तो ये 10 हुए पहले, भक्ति का प्रारंभ हो गया। अब आगे चल के और प्रगति करनी है तो क्या करने होंगे, पढ़िएगा।
इसके अतिरिक्त जिन आदेशों की सूची दी गई है, सब भक्तों की संगति का देवता को परिचार, भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना।
जैसे जैसे ये पढ़ा जा रहा है आप इसको अच्छी तरह से सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा, ठीक है। तो अभी ये जो अभी जो 10 पढ़े हैं वो क्या है, निवृत्ति। देखिए सब आप नोट कीजिएगा, भक्तों का संग, अभक्तों का संग त्यागना चाहिए, अर्थात अभक्तों का संग नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, किसी ऐसे व्यक्ति को उपदेश नहीं करना चाहिए जिसकी श्रद्धा नहीं है, है ना। तो ये सारे निषेध हैं। तो निषेधों का वर्णन है, पहले विधियों का और अभी निषेधों का वर्णन है। तो ऐसे ये 20 नियमों का जो पालन करते हैं वो अच्छी तरह से साधन भक्ति में प्रगति करेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये तो स्वाभाविक है कि साधन भक्ति करते समय भक्त कोई न कोई सेवा अपराध या नाम अपराध करेगा। नाम अपराध तो आप जानते हैं कि हर रोज सुबह मंगल आरती के बाद 10 नाम अपराधों का उच्चारण होता है। साथ साथ सेवा अपराध, ये क्या है सेवा अपराध, मतलब क्या? 10 नाम अपराध तो आपने सुने हैं ना सब। सेवा अपराध मतलब विग्रह के प्रति अपराध, विग्रह की सेवा करते हुए जो अपराध होते हैं उनको सेवा अपराध कहते हैं, और हरि नाम के प्रति जो अपराध होते हैं उनको नाम अपराध कहते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यह स्वाभाविक है कि साधक जो है वो ऐसे अपराध, नाम अपराध और सेवा अपराध करेगा, परंतु ऐसे अपराध करने के बाद उसे बुरा लगना चाहिए कि अरे मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, और आइंदा उसे ऐसे गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत सावधान रहना चाहिए भक्त को कि वो ऐसे अपराधों से बच के रहे। ठीक है, आगे पढ़िए। कोई पढ़ेंगे?
महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है, शरीर पर तिलक धारण करें, यह तिलक वैष्णव चिन्ह है। भाव यह है कि जो ही वैष्णव के शरीर पर कोई इन चिन्हों को देखे तो उसे तुरंत कृष्ण का स्मरण हो आए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वह है जिसे देखने पर कृष्ण का स्मरण हो आए। अतएव यह आवश्यक है कि अन्यों को कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव अपने शरीर पर तिलक लगाए।
बहुत सुंदर बात है ना। कौन है वैष्णव? जिनको देखकर भगवान का स्मरण हो। इसलिए हमारी वेशभूषा, हमारा पोशाक, हमारा जो भी कुछ, सब कुछ ऐसे होना चाहिए जिससे कि लोग जब हमें देखें तो भगवान का स्मरण हो जाए। ये हमारी वर्दी है। जैसे पुलिस अपने वर्दी पहनते हैं तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि पुलिस का आदमी है, थोड़ा सावधान रहना चाहिए, गाड़ी ठीक से चलाना चाहिए, नहीं तो ये कुछ फाइन दे देगा, दंड दे देगा, है ना। तो उसी प्रकार से लोग भगवान के भक्तों को देखते हैं तो थोड़ा कुछ संभल जाते हैं, ठीक है अभी कुछ ठीक ठाक रहना चाहिए, भगवान का स्मरण होता है, तो ये भक्तों की वर्दी है। तो भक्तों की वर्दी से लाभ क्या होता है? दूसरों को भी लाभ होता है और अपने आप को भी लाभ होता है। होता है ना? कैसे होता है अपने आप को लाभ? दूसरों को लाभ होता है, वो हमें देखकर कृष्ण का स्मरण करते हैं, लेकिन अब हमें कैसे लाभ होता है? रक्षा होती। कैसे रक्षा होती है? हाँ वो तो है, वो भी है, लेकिन वो बाद वाली बात है, वो तो मृत्यु वाली बात है। तो ये दूसरों को लाभ होता है, लेकिन हमारे लिए लाभ क्या होता है? हिचकिचाएंगे ना गलती करते समय। अभी जैसे कोई तिलक पहनकर सिनेमा थिएटर में जा रहा है तो सोचेगा ना, अरे कम से कम उसे निकाल के तो जाऊं। सोचेगा तो सही ना, कम से कम, है ना? तो अपनी रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम वैष्णव पोशाक पहनते हैं, वैष्णव चिन्ह हमारे शरीर पे होते हैं, तो हम थोड़े सावधान रहते हैं कि हम ऐसे कोई गलती न करें जिससे कि लोग हमारी निंदा न करें, हमारे संघ की निंदा न करें, मंदिर की निंदा न करें, जिनसे अन्यों की श्रद्धा नष्ट न हो जाए। वैष्णव पोशाक पहनते हुए हमने कोई ऐसे गलत काम किया तो लोगों की श्रद्धा में ठोस पहुंच जाएगी, वो सोचेंगे अरे ये लोग क्या है। ठीक है, हमें को भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब लोग ऐसे ही हैं, ऐसा सोचेंगे लोग। इसलिए भक्तों को विशेष करके बहुत सावधान रहना चाहिए कि उनका आचरण विशेष करके समाज में लोगों के सामने बहुत ही आदर्श होना चाहिए। तो तिलक का भी ये महत्व है। और आगे चल के तो बहुत सी बातें हैं कि यमदूत पास में नहीं आएंगे वगैरह, ऐसे तो और कई लाभ है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं।
तिलक से कोई आगे देख के पता चलता है कि हाँ ये गुरु वैष्णव है। तिलक अगर ऐसा थोड़ा सा अलग उधर बरत होते ये कौन से संप्रदाय से, तिलक से हम अपने शरीर को एक तरह से मंदिर बनाते हैं भगवान।
बहुत अच्छा, शरीर को मंदिर भी बना लेते हैं। एक बार तिलक लगा लिया तो शरीर मंदिर हो गया, तो भगवान कहाँ है? हृदय में, परमात्मा रूप में है भगवान। तो ये शरीर भी हमारा एक मंदिर है वास्तव में। मंदिर के अंदर हम लोग भोग करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो बहुत सावधान रहते हैं ना, शुद्ध हमारा व्यवहार होता है। तो उसी प्रकार से जब हम ये जान जाएंगे कि ये मेरा शरीर मंदिर है, तो इस शरीर का दुरुपयोग नहीं करेंगे कभी भी, है ना? इस शरीर को हमेशा शुद्ध ही रखेंगे। तो ठीक है, आगे पढ़िएगा। तो 20 नियमों का वर्णन तो हो गया, और फिर अभी 21वां भी हो गया, तो 22वां हो गया, यानी 22वां चल रहा है अभी, पढ़िए।
दूसरा, ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी-कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है।
आपने देखा होगा कई बाबा जी यहाँ पे वृंदावन में है, ऐसे मुद्रा उनके शरीर में होता है हरे कृष्ण, या कई लोग ऐसे यहाँ कपाल में भी लगाते हैं। पूरे शरीर में भी ऐसे लगाते हैं वो, हाँ चिन्ह कही।
तीसरा, अर्चा विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करे और उन्हें अपने शरीर पर धारण करे।
इसको निर्माल्य कहते हैं। तो पहनना, हम वैसे बाहर समाज में एक प्रथा है, क्या है कि जब कोई व्यक्ति आता है उसको सम्मानित किया जाता है, उसको गले में हार वगैरह फूलों का पहनाया जाता है, तो तुरंत वो निकाल लेता है, रख लेता है ना? लेकिन भगवान के जो माला है, निर्माली है, उसको थोड़ी देर पहन के रखना चाहिए। ऐसा नियम है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे निर्माल्य को हमें स्वीकार करना चाहिए, और पहन के रहने से शुद्धिकरण होता है, भक्ति भाव उदित हो जाता है हृदय में, क्योंकि ये प्रसाद है ना, महाप्रसाद है भगवान का, इसलिए इसको पहन के रखना चाहिए थोड़े समय के लिए। आगे बढ़िए।
चौथा है अच्छा विग्रह के समक्ष नाचना सीखे।
कभी कभी लोग कहते हैं ठीक है आपकी बातें सब अच्छी लगती हैं, आपका जप, आपका कीर्तन, आपकी किताब, आपके प्रवचन, लेकिन एक बात हमें बहुत खटकती है, आप लोग नाचते क्यों हैं ऐसे? आप लोग नृत्य क्यों करते हैं? क्या है इसमें? तो आप शांति से बैठकर भजन नहीं कर सकते क्या? कई बार हमको लोग ऐसे कहते हैं, शांतिपूर्वक भक्ति नहीं की जा सकती क्या? तो ये तो कलयुग का धर्म है, संकीर्तन यज्ञ जो चैतन्य महाप्रभु ने उद्घाटित किया है। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कलयुग में लोगों की क्या दशा होगी, उनकी क्या मानसिक और बौद्धिक योग्यता होगी, वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। आजकल कौन ऐसा व्यक्ति है जो एकांत शांत में बैठ ऐसे अकेले बैठ के बिल्कुल शांत रहेगा, उसका उसकी बुद्धि भी तेज रहेगी, ध्यान भी अच्छी तरह से रहेगा? आपने अनुभव किया होगा जब इन क्लास में भी अंदर आप बैठते हैं तो मन कितनी बार इधर उधर जाता है ना। तो जप के समय भी जब आप बैठते हैं तो कितने समय मन इधर उधर भटकता है। तो कलयुग में यह संभव नहीं है कि केवल हम शांतिपूर्वक बैठ के 24 घंटा अपना बिताएं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही अपनी असीम बुद्धि से ये मार्ग बतलाया है कि जब हम कीर्तन करते हैं तो कीर्तन के समय सारे अन्य विचार चले जाते हैं, कीर्तन से भाव विकसित बहुत आसानी से हो जाता है और स्वाभाविक। और ये कोई नई बात नहीं है, भागवतम में भी ऐसे कई प्रमाण हैं। नृत्यति लोक बाह्य हसति रोदति रोति इति गायति, उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्य कि ऐसे जो भक्त है एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैहि हसत्य रोदति रोति गायति उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्य। नृत्य बाह्य मतलब अन्यों की परवाह न करते हुए वो नृत्य करता है भाव विभोर होकर। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे खुद अपने उदाहरण से सिखलाया था, जब संकीर्तन हुआ करता था विशेष करके रथ यात्रा के समय तो जगन्नाथ जी के रथ के सामने वो नृत्य किया करते थे अपने भक्तों के साथ में। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ये एक नियम है। और क्या करना चाहिए हमें नृत्य करने के लिए? सीखना चाहिए, मतलब ढंग से नृत्य करने के लिए। कई बार ऐसे देखा जाता है भक्त लोग तरह तरह लोग आके तरह तरह के नृत्य करते हैं, कभी कभी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है क्योंकि कई लोग बाहर से आते हैं, भक्ति के नियम क्या है उनको पता नहीं है, उनको अच्छा लगता है चलो कीर्तन चल रहा है नृत्य चल रहा है तो वो भी शामिल हो जाते हैं, अच्छी बात है। परंतु जब ढंग से वो नृत्य नहीं करते हैं तो वातावरण पूरा दूषित हो जाता है। कभी कभी लोग ऐसे नृत्य करते हैं जो अच्छे ढंग से नहीं करते हैं तो वो ठीक नहीं है। नृत्य करते हैं तो केवल हमारे मनोरंजन के लिए नहीं करते हैं, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जैसे सिखाया है नृत्य करने के लिए उस तरह नृत्य करना चाहिए। एक बार एक माताजी मंदिर में हमको बता रही थी, वो माताजी भक्त हैं, तो कह रहे थे कि एक दिल्ली की कोई लड़की आई, हमने सुना कि यहां डांसिंग होता है, हम डांसिंग करना चाहते हैं। तो माताजी को गुस्सा आया, उनका ये क्या डिस्को है क्या कोई है? कि डांसिंग करने आई हो यहां पर, यहां भक्ति है, ये भक्ति का अंग है, ढंग से होता है सब कुछ, ऐसे नहीं कि नहीं हम यहां डांसिंग करने आए हैं। तो लोग ऐसे कभी गलत समझते हैं। तो नृत्य जब होता है तो वो नृत्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, इसलिए ढंग से होना चाहिए। महाप्रभु ने सिखलाया था दो हाथ ऊपर करके कैसे झूम के नृत्य करना चाहिए। लेकिन आजकल सिनेमा आदि से प्रेरित होकर और पाश्चात्य देशों की संस्कृति से प्रेरित होकर लोग तरह तरह के सब चीजें करते हैं। तो हमारे मंदिरों में भी हमें सावधान होना चाहिए कि जब भी ऐसे कोई गलत तरह से नृत्य करे तो उनको थोड़ा प्यार से थोड़े प्रेम से रोकें और कहें कि ऐसे नहीं, ऐसे नृत्य नहीं करना चाहिए। और कभी जब केवल भक्त रहते हैं तो फिर अलग बात है और बहुत ही उत्साह से किया जा सकता है। परंतु जब बाहर के भी लोग बहुत होते हैं तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि किस प्रकार का उदाहरण उनके सामने रखा जाता है, है ना? अब मानते हैं इस बात को? ठीक है, आगे पढ़िए।
पांचवा है, अर्चा विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखे।
आगे पढ़िए।
छठा है, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़ा हो जाए।
पढ़ते रहिए।
सातवा, जब अर्चा विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में शामिल सम्मिलित हो जाए। यह ध्यान देने की बात है कि भारत के विष्णु मंदिरों में विशेषतर यह प्रथा है कि प्रमुख अर्चा विग्रह तो मंदिर के विशेष स्थल पर स्थायी रूप से स्थापित रहता है, किंतु छोटे छोटे अर्चा विग्रहों के समूह को सायंकाल में विहार यात्रा पर निकाला जाता है। कुछ मंदिरों में बाजे गाजे के साथ सायंकाल विशाल जुलूस निकाला जाता है जिसमें अर्चा विग्रहों को ठेले पर या भक्तों द्वारा उठाई हुई पालकी के ऊपर रखे अलंकृत आसन पर बिठाकर ऊपर से एक सुंदर बड़ा छाता छत्र ताना जाता है। इस तरह अर्चा विग्रह सड़क पर बाहर निकलकर पड़ोस में यात्रा करते हैं और पड़ोस के लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए बाहर निकलते हैं। पड़ोस के सारे निवासी यात्रा के पीछे पीछे चलते हैं जिससे बहुत ही उत्तम दृश्य उपस्थित होता है। जब अर्चा विग्रह बाहर निकलता है तो मंदिर के सेवक उसके समक्ष दैनिक आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं जिसमें चढ़ावा तथा खर्च का विवरण रहता है। बात यह है कि अर्चा विग्रह को समूचे संस्थान न्यास का स्वामी माना जाता है और मंदिर के पुजारी तथा देखभाल करने वाले अन्य लोग अर्चा विग्रह दास माने जाते हैं। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है और आज भी इसका पालन होता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जब अर्चा विग्रह शोभा यात्रा पर निकले तो सारे लोग उनके पीछे पीछे चले।
तो आपने ध्यान से सुना और पढ़ा, कितनी सुंदर संस्कृति है ना। पहले कितना हुआ करता था, आजकल तो कम हो गया है। जगह जगह इनको उत्सव मूर्ति कहते हैं या विजय विग्रह कहते हैं, जो छोटे मूर्तियां होती हैं। छोटे मतलब इतने जिनको हम सुला सके, उनको बाहर शोभा यात्रा मिले जा सके, कम से कम इतने इतने हमारे कृष्ण बलराम राधे श्याम और गौरनिताय के अर्चा विग्रह है ना, छोटे विजय मूर्ति आपने देखे होंगे कभी कभी जब शोभा यात्रा पे निकलते हैं। तो उस समय जब विग्रहों की ऊंचाई हम बताना चाहते हैं हाथों से, कैसे बताना चाहिए? ऐसे बताना चाहिए कि ऐसे? ऐसे क्यों नहीं बताते हम? फिर वह सीमित हो जाते हैं। ऐसे बताने से क्या है, वास्तव में असीमित है ऐसे, परंतु केवल हमारे हमारे ऊपर कृपा करने के लिए वो एक तथाकथित सीमित रूप में हमारे सामने आए हैं। बताते ना अर्चा विग्रह कितने बड़े, वो ऐसे इतने हैं। ठीक है, तो ये यहाँ कृष्ण बलराम मंदिर में, हमारे मंदिर में भी होता है, विशेष करके जब रामनवमी का दिन होता है या गोवर्धन पूजा के दिन होता है। दिन में साल में दो बार तो कम से कम विग्रह बाहर निकलते हैं, और विशेष करके दक्षिण भारत में तो ये बहुत ही कॉमन है, साधारण चीज है। जैसे तिरुपति में आप जाएंगे, श्रीरंगम में जाएंगे, उडुपी में जाएंगे, तो ऐसे भगवान के अर्चा विग्रह बाहर निकलते हैं और सैर करने जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा क्या है? वही है ना, फर्क केवल एक है। क्या है? जगन्नाथ यात्रा में बड़े विग्रह निकलते हैं जो मूल विग्रह हैं, लेकिन अन्य जो शोभा यात्राएं होती हैं उनमें छोटे विग्रह जो उत्सव मूर्ति होते हैं, विजय विग्रह होते हैं, वो निकलते हैं बाहर। क्योंकि भगवान भी सोचते हैं ना, अरे मैं तो सारा दिन घर में रहूं, मेरे मंदिर में रहूं, मुझे भी तो बाहर जाना है, मुझे भी सैर करना है। हम लोग दिन भर घर में रहेंगे, हमें कभी इच्छा नहीं होती कि बाहर जाएंगे कभी? तो भगवान की भी तो इच्छा होती है कि भी बाहर जाएं। साथ साथ में भगवान सोचते हैं मेरे मंदिर में तो कम लोग आते हैं, मैं बाहर जाऊंगा तो सबको दर्शन दे पाऊंगा। तो इस भावना ले, ये भावना लेकर भगवान बाहर निकलते हैं। और फिर जितने भी घर हैं वगैरह, जितने भी लोग सड़क पे हैं, वो फिर खड़े हो जाते हैं, नमस्कार करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, कीर्तन में शामिल हो जाते हैं। और फिर हर एक घर से लोग कुछ न कुछ बनाकर लेके आते हैं, कोई भोग चढ़ाने के लिए फिर आके वो देते हैं, या कोई आरती उतारते हैं, तो सारा माहौल बदल जाता है, पूरा उत्सव हो जाता है, इसलिए उत्सव मूर्ति कहते हैं। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी संस्कृति आजकल नहीं दिखाई पड़ती। तो आगे पढ़िएगा। और यह भी कहा गया है कि विग्रह को न्यास का जो स्वामी है या मालिक है उसको समझा जाता है। हम भी यहां चाहते थे वास्तव में मंदिर के जो अकाउंट्स हैं वो विग्रह के सामने पढ़ने के लिए, किसी वजह से नहीं हो पाया, अभी करेंगे। फिर से हमें याद आ गया जब हमें पढ़े कि हम करना चाहते थे एक साल पहले, मगर किसी न किसी वजह से वो नहीं शुरू कर पाए। अभी शुरू करेंगे कि मंदिर के जो अकाउंट्स है वो भगवान के सामने जाकर अंदर ऑल्टर के ऊपर सिंहासन में पुजारी में पढ़ेंगे, हाँ आज खर्चा इतना, इस महीने में इतना खर्चा हुआ, इन चीजों में ये हुआ। डेली नहीं, महीने में, महीने के अकाउंट्स दिए जा सकते हैं। जैसे कर्मचारी को मालिक को देना पड़ता है ना अकाउंट, आपके इतने पैसे खर्च हो गए, आपकी कमाई इतनी हो गई आपके व्यवसाय में। तो यह हम भगवान के पास जाके कहते हैं दान में इतना पैसा आया, और कोई अगर विशेष किसी ने दान दिया होगा तो उनका भी नाम, हाँ इन्होंने ये विशेष दान दिया है और इसमें हमने खर्च इतना कर दिया, प्रसाद के लिए इतना खर्च हो गया। और फिर उनके सामने उनके चरणों में रखना, फिर थोड़ी देर के बाद उसको उठा के फिर ले जाना, उसको फिर रखना। तो घर में भी करना चाहिए ऐसे, घर के मालिक भी तो वही है ना, ऐसा नहीं कि केवल मंदिर उनका और घर हमारा है, ऐसा नहीं है, है ना, सही, घर भी तो उन्हीं का है ना। तो घर में भी हमें थोड़े जो कितना खर्चा हुआ, कितना क्या हुआ, क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई ठाकुर जी को बताना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो भाव बन जाएगा कि ये व्यक्ति है, ये कोई ऐसे मूर्ति नहीं है जो खड़े हैं बस, ये व्यक्ति है और जीवित है, इसलिए ये एक संबंध प्रेम का स्थापित हो जाता है भगवान में और मैं। जैसे सेवा शुरू हो जाती है तो प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, तो हम भगवान को सुनाते हैं कि आपके पुस्तकें जो इतने वितरित हो गए, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जो विशेष दान देते हैं उनका भी नाम पढ़ा जाता है ताकि भगवान भी जाने कि भाई कौन मेरी सेवा कर रहा है, देखो तो सही, सुनो तो सही, भगवान भी जानना चाहते हैं। और भगवान के सामने उनका सम्मान करना, भगवान देख सकते हैं हाँ ये मेरे भक्त है जिन्होंने मेरी इस प्रकार से सेवा की। और फिर भक्तों को भी प्रेरणा मिलती है कि हाँ भगवान ने मेरा भेंट जो है, मेरा दान जो है वो स्वीकार किया है। एक भावना, ये भक्ति है। तो भक्ति में ऐसे व्यक्तिगत बहुत पर्सनल होना चाहिए सब कुछ। नहीं, कभी अंदर भी बाहर भी, जब उत्सव मूर्ति के सामने भी कभी रख लेते हैं, ये कभी हम मंदिर के अंदर भी कर सकते हैं। मतलब कहने की बात है कि भगवान जो है, विग्रह जो है, वो मालिक हैं, स्वामी हैं मंदिर के या घर के या जो भी है। हाँ, आगे बढ़िए।
भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम एक बार या दो बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाए। वृंदावन में इस प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। नगर के सारे भक्त हर सुबह शाम विभिन्न मंदिरों के विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। नगर भर में इन अवसरों पर काफी भीड़ रहती है। वृंदावन नगरी में लगभग 5,000 मंदिर है। निसंदेह इन सबों के दर्शन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम एक दर्जन ऐसे काफी बड़े और महत्वपूर्ण मंदिर हैं जिन्हें गोस्वामियों ने स्थापित किया था और जिनका दर्शन अवश्य करना चाहिए।
तो भगवान के शिव विग्रह का दर्शन कम से कम दिन में एक बार होना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं कम से कम दो बार, तीन बार, दिन में एक बार, दिन में दो बार, जितना हो सके कम से कम दर्शन करना अनिवार्य है। और वृंदावन में भी 5000 मंदिर हैं, लेकिन 5000 मंदिरों में तो हम जा नहीं सकते, तो कम से कम जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा अगर नहीं भी जा सकते तो कोई बात नहीं, कृष्ण बलराम मंदिर काफी है। क्योंकि पहले जब भक्त आए थे तो इधर उधर जाया करते थे और तरह तरह के लोगों से मिलते थे, उनसे प्रभावित हो जाते थे और उनकी भक्ति इधर उधर चली जाती थी, मतलब गलत सिद्धांत को स्वीकार करते थे। ऐसा नहीं कि हर एक आदमी जो वृंदावन में है वो सही सिद्धांत के अनुसार चल रहा है। किसी से दोस्ती हो गई, उसने भी तिलक पहन लिया है, वैष्णव पोशाक है, तो सोचते हैं कि ये भी अच्छे भक्त हैं, उनसे मिलने लगे और फिर उनकी फिलॉसफी, उनके दर्शन कुछ अलग ही है, उस पथ पे चले गए, देखा कि इसको छोड़ गए, उधर चले गए। तो इसलिए ये सब घटनाएं होने लगी। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि सारा वृंदावन ये कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण के अंदर ही है, जो लाभ आपको मिलेगा यहाँ आप पाएंगे। हाँ, एक आध बार कभी यहाँ वहां दर्शन के लिए जाना हो तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु समझ लेना चाहिए कि हमारा मार्ग ठीक रहना चाहिए, हमें मार्ग से हट के नहीं जाना चाहिए। जिन सिद्धांतों के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं उन सिद्धांतों से हटकर हमें नहीं जाना चाहिए। आगे पढ़िएगा।
नौवां है मंदिर, मंदिर की कम से कम तीन परिक्रमाएं की जाए। मंदिर में उसके चारों ओर कम से कम तीन बार घूमने की व्यवस्था रहती है। कुछ भक्त अपने व्रत के अनुसार तीन से अधिक परिक्रमाएं करते हैं, कभी 10 तो कभी 15 भी। गोस्वामीगण तो गोवर्धन की परिक्रमा किया करते थे, संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र की भी परिक्रमा करनी चाहिए।
तो परिक्रमा जो है गोस्वामी, सनातन गोस्वामी रोज किया करते थे जब वो चकलेश्वर तीर्थ में रहा करते थे। चकलेश्वर तीर्थ तो मानसी गंगा के तट पर है और वहां से वो लंबी परिक्रमा करते थे। अब जो परिक्रमा करते हैं करीब करीब 21-22 किलोमीटर है, लेकिन जो परिक्रमा सनातन गोस्वामी करते थे रोज, वो करीब करीब 40 किलोमीटर की थी, रोज किया करते थे। और आज भी आप जाएंगे गोवर्धन में, आप देखेंगे कि ऐसे कई बाबा जी हैं, कई भक्त हैं जो रोज परिक्रमा करते हैं। कई बार लोग दो परिक्रमा भी दिन में करते हैं। और हमने सुना कि एक है जो पहले एक विशेष कार्तिक में तीन बार करते थे दिन में लेकिन इतना करने की हमारे लिए आवश्यकता नहीं है। अति तपस्या भी हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन सिद्धांत यह है परिक्रमा करना चाहिए। ये थोड़ी बहुत तपस्या तो करनी है। जब भी बाहर से कोई आते हैं वृंदावन तो अवश्य वो गोवर्धन परिक्रमा करके जाते हैं, फिर वृंदावन की परिक्रमा भी की जा सकती है और मंदिर की परिक्रमा कम से कम। तुलसी की परिक्रमा भी करते हैं। अच्छा, रोज सुबह हम तुलसी प्रदक्षिणा करते हैं तो क्या बोलते हैं, बोलिए। तो क्या मतलब हुआ इसका, अभी शब्दार्थ बताइए। अभी आपको आदत लगा दी ना श्लोक लगा के, अभी बताइए। यानी कानी च पापानी, पाप यानी कानी, जितने भी सारे हमने पाप किए होंगे, उदाहरणार्थ ब्रह्म हत्या आदि कानी कानी च, यहां तक कि ब्रह्म हत्या भी हमने की होगी। ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मणों का वध, ब्राह्मणों की हत्या भी की होगी। तो फिर आगे बोलिए। तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे, पदे पदे हर पद पे लेते लेते क्या होता है, वो सारे पाप नष्ट होते जाते हैं, प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे हम प्रदक्षिणा करते हैं तुलसी का, तो सारे पाप हमारे नष्ट होते जाते हैं। हर कदम, एक कदम लिया थोड़े पाप नष्ट हो गए, नष्ट होते जा रहे हैं, और दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, तो करते जाना चाहिए। कितने बार करना चाहिए प्रदक्षिणा तुलसी का? चार बार। चार बार करने से वैसे जितने बार भी करें ठीक है, लेकिन करना चाहिए। तो प्रदक्षिणा करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ साथ भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है और हम सम्मान व्यक्त करते हैं। अगर तुलसी की प्रदक्षिणा कर रहे हैं तो तुलसी के प्रति हम सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। गोवर्धन की परिक्रमा करने से गोवर्धन के प्रति सम्मान हम दे रहे हैं, ठीक है। और जब तुलसी की प्रदक्षिणा करते हैं तो थोड़ा सावधानी से, ऐसा नहीं कि हमारे कंधों से तुलसी को लग जाए, या जल अर्पण करते हुए तुलसी को थोड़ा सम्मान से, ऐसे लोग बहुत हिला देते हैं तुलसी महारानी को, थोड़ा सम्मान से होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए।
दसवां है, मंदिर में अच्छा विग्रह की पूजा विधान पूर्वक की जानी चाहिए, आरती करना तथा प्रसाद चढ़ाना, अच्छा विग्रह का अलंकरण करना आदि, ये सब काम नियमित रूप से होने चाहिए। ग्यारहवां है,
ये है अच्छा विग्रह की सेवा, ठीक है। आगे बढ़िए।
अच्छा विग्रह की स्वयं सेवा की जाए,
ठीक है, बढ़िया।
बारवा गायन करे, तीसरा संकीर्तन करे, चौदह कीर्तन जप करे, पंद्रहवा।
इससे हम समझ सकते हैं कि कई बार ऐसे नियम है जो दोहराए गए हैं। क्यों ऐसे दोहराते हैं रूप गोस्वामी? महत्व देने के लिए, कि बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर भी हम देखेंगे, अभी 15 और 16 नंबर में भी बताइए, पढ़िए।
16 प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करें।
नहीं, 15 कौन सा है?
प्रार्थना करें।
प्रार्थना करें। और 16वां
प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करें।
इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही तो प्रार्थना है, वंदना, तो अंतर क्या है?
एक स्मरण का आचार्य भी है। एक बता रहे हैं कि प्रार्थना करें और दूसरा बता रहे हैं कि आचार्यों के द्वारा ये की गई है स्तुति
जैसे समझ लीजिए ब्रह्म संहिता है, या कुंती महारानी की स्तुति है, या अक्रूर की प्रार्थनाएं हैं, या श्रीमद गोपी गीत है, ऐसे विभिन्न जितने सुंदर सुंदर कविताएं प्रार्थनाएं हैं, है ना, भागवत में अन्य ग्रंथों में शिक्षाष्टक है, तो जब विग्रह के सामने आते हैं तो हमें ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। आप जगन्नाथपुरी में ऐसा देखेंगे, आप अगर दर्शन कर रहे हैं खड़े रहकर जगन्नाथ जी के सामने, आपके बगल में कोई ऐसे कोई स्तुति कर रहा होगा, गीत गोविंद का कुछ बोल रहा होगा, कोई कोई दूसरा श्लोक बोल रहा होगा, जयति जननिवास हो देवकी जन्मवाद हो। तो ये एक नियम है, विधि है, कि हमें भगवान के सामने आकर ऐसे कोई भगवान की स्तुति करनी चाहिए। किस कैसी स्तुति? हमें सीखना चाहिए कैसे स्तुति करना, ऐसे महाभागवतों के, ऐसे महान भक्तों के स्तुतियों को सीखकर हम जानते हैं कि किस तरह की प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए। और दूसरी बात, अपने भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो दोनों आवश्यक है। और अपनी प्रार्थना जब करते हैं तो ऐसी चीज कहनी चाहिए भगवान से जो उचित है, जो योग्य है। जो व्यक्ति कच्चा है भक्ति में, वो नहीं जानता किस प्रकार से भगवान की स्तुति करना। तो भागवत में जितने भी सारे प्रार्थनाएं हैं आप देखेंगे, सब कच्चे नहीं है, सब पक्के हैं। परिपक्वता की अवस्था में उन्होंने वास्तविक के भक्ति भाव से ये प्रार्थनाएं की हैं। तो दोनों आवश्यक हैं। भगवान के सामने जाकर हमें कोई साधारण प्रार्थना भी कर सकते हैं कि शाश्वत रूप से आपके चरणों में हमें रखिए, हमारे हृदय से जो भी अनर्थ है उनको नष्ट कर दीजिए। ऐसे प्रार्थनाएं हैं जो भक्ति के विरुद्ध नहीं है, बल्कि जो भक्ति में हमें लाभदायक होंगे, ऐसे प्रार्थनाएं हम कर सकते हैं। आगे बढ़िए।
17 है, महाप्रसाद को ग्रहण करें, अच्छा विग्रह के समक्ष अर्पित थाल से ही लेकर। 18वां चरणामृत पान करें। 19वां अच्छा विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों को सूंघे।
तो देखिए किस प्रकार से हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग रही हैं। कृति साध्या, सारी इंद्रियां हमारी इसमें पूरी तरह से लग रही हैं। आगे बढ़िए।
अच्छा विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करें।
हाँ, ये तो सबको नहीं होता, केवल एक ही मंदिर है जहां हमने देखा ये इसकी अनुमति है। कहाँ पे? पंढरपुर में। लेकिन अन्य मंदिरों में तो हम विग्रह का को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, केवल पुजारी कर सकते हैं। हाँ, आगे बोलिए।
21वां है, अच्छा विग्रहों का भक्ति पूर्वक दर्शन करें। 22वां, समय समय पर आरती आरंभिक करें। 23वां, श्रीमद् भागवत भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें। 24, अच्छा विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें।
आगे।
25वां, अच्छा विग्रह का स्मरण करें। 26वां, अच्छा विग्रह का ध्यान करें। 27, स्वेच्छा से कुछ सेवा करें। 28वां, भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें।
स्वेच्छा कोई सेवा स्वेच्छा से कोई करे, आपने देखा होगा कई बार ऐसे लोग आते हैं, यात्री आते हैं और देखते हैं जैसे 7:15 बजे मंदिर का मार्जन होता है सुबह, तो वो भी झाड़ू उठा लेते हैं खुद, कोई बोलता नहीं उनको कि आप सफाई कीजिए, उठा लेते हैं झाड़ू, खुद सफाई करना शुरू कर देते हैं, कई बार ऐसे देखा जाता है। तो सेवा करने की भावना एक स्वाभाविक चीज है और तुरंत कुछ ना कुछ करने बैठ जाते हैं। आगे बोलिए।
29वां, अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करें। 30वां, अपनी मनपसंद वस्तु यथा भोजन या वस्त्र भेंट करें। 31, कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेले और हर प्रयास करें।
तो भगवान को ऐसी चीज अर्पण नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। हमारे पास कोई वस्तु है हमें नहीं चाहिए तो चलो अर्पण कर दो भगवान को, ऐसा नहीं, जो प्रिय वस्तु है वो देना चाहिए। हाँ, ये भी एक है, ये भी एक तरह का भाव है। आगे पढ़ेंगे विस्तार में, जब हर एक अंग का विश्लेषण होगा ना तो उसके बारे में उस समय चर्चा करेंगे।
32वां है, हर हालत में शरणागत बना रहे। 33वां, तुलसी के पौधे को सींचे। 34, नियमित रूप से श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुने। 35वां है, मथुरा वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहे। 36वां है, वैष्णव भक्तों की सेवा करें। 37वां, अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करें। 38, कार्तिक अक्टूबर नवंबर मास में विशेष सेवा का प्रबंध करें। 39, जन्माष्टमी कृष्ण के इस जगत के में प्राकट्य के अवसर पर विशेष सेवा आयोजन करें। 40, अच्छा विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वह सावधानी से तथा भक्ति पूर्वक किया जाए।
तो यह है अच्छा विग्रह की सेवा। ये अभी हम आखिरी 5 जो है सबसे महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ अंग इन तक पहुंच गए हैं, 40 से लेकर। हाँ, तो नंबर 40 वास्तव में कौन सा नंबर है? नंबर 60 है वास्तव में, क्योंकि इसके पहले 20 आए थे ना। तो ये आखिरी 5 को ध्यान से आप सुनिएगा। हाँ, फिर से 40वां पढ़िए।
40वां है, अच्छा विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वह सावधानी से तथा भक्ति पूर्वक किया जाए। 41, भक्तों के बीच में ही भागवत वाचने का आनंद उठाया जाए, बाहरी लोगों के बीच में नहीं। 42वां है, अधिक बड़े चढ़े भक्तों की संगति करें। 43, भक्तों भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। 44, मथुरा की सीमा मंडल में वास करें।
ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने हुए? 64। आगे पढ़िए। अभी
इस तरह कुल मिलाकर 64 विधान होते हैं, किंतु जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है इनमें प्रथम 10 ही मूल विधान हैं, फिर 10 गौण नियम हैं और इनके बाद अन्य 44 कार्य हैं। इस तरह वैदिक भक्ति संपन्न करने के लिए कुल मिलाकर 64 बातें हैं। इनमें से 5 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अच्छा विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, भक्तों की संगति, संकीर्तन तथा मथुरावास।
चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी को चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन। ये 5 चीजें, सकल साधन श्रेष्ठ ए 5 अंग, कृष्ण प्रेम जन्माय ए 5 अल्प संग। ये घुमाएंगे जो एक वो लगाएंगे, तो ये सनातन शिक्षा से है चैतन्य चरितामृत में। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरावास श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ ए 5 अंग, कृष्ण प्रेम जन्म ए 5 अल्प संग। अभी इसका मतलब बताइए। भक्तों का संग, नाम कीर्तन, भागवतम का श्रवण, मथुरा में वास, अर्चा विग्रह की सेवा श्रद्धा के साथ,
ये सारे साधन श्रेष्ठ
हैं। सकल साधन श्रेष्ठ मतलब सारे साधनों में से 5 श्रेष्ठ हैं।
कृष्ण प्रेम को उत्पन्न करने के लिए।
अल्पसंग, अल्पसंग मतलब थोड़ा सा भी इन 5 अंगों का स्पर्श अगर हमारा हुआ तो क्या होगा, कृष्ण प्रेम का जन्म होगा। सकल साधन श्रेष्ठ, ये 64 साधन जो हैं उनमें से 5 सर्वश्रेष्ठ हैं। ए पंच अंग और इनका अल्प भी थोड़ा मात्र संग अगर हुआ तो कृष्ण प्रेम उदित होता है हृदय में। 5 बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से आप कौन से कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं आप? साधु संग सब भक्तों के बीच में बैठे हैं वो तो हो रहा है, नाम कीर्तन वो तो दिन में आप मंगल आरती या कोई बीच में कीर्तन वगैरह में जाते ही हैं, करते ही हैं। तीसरा भागवत श्रवण वो तो हो ही रहा है, भागवत क्लास में भी बैठते हैं, घर में भी भागवत पढ़ते हैं, यहाँ भी क्लास में भागवत की चर्चा होती है, मथुरा वास तो है। और जब आप अपने घर में चले जाएंगे, आप अगर आप में से कितने भक्त वृंदावन के बाहर से आए हैं खास करके यहाँ भक्ति शास्त्री करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बस 8 9 10। आप सब कहाँ कहाँ से आए, जो मथुरा से वृंदावन से बाहर से आए हैं बताते जाइए। नागपुर, कानपुर, अच्छा रायचूर, अलीबाग, और कोई पुणे, नागपुर, दिल्ली, बेलगाम, और सब बेलगाम और यहाँ वृंदावन के सब कहाँ से, कोल्हापुर, ठीक है। और बाकी सब तो वृंदावन में वास करते हैं। तो अभी जो आप में से हम लोग जो भी वृंदावन में वास करते हैं हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कम से कम जो थोड़े समय के लिए हैं वो तो आएंगे पढ़ेंगे जाएंगे, लेकिन जो रहते हैं हमेशा यहाँ पर, हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम कोई भी गलती ना करें, अपराध ना करें, बड़े उत्साह से भक्ति करते रहें। लेकिन आप जहां भी जाएंगे, चाहे वो नागपुर हो, कानपुर हो, रायचूर हो, अलीबाग हो, पुणे हो, बेलगाम हो, जहां भी हो, आपको अपने स्थान को वृंदावन बनाना है। कैसे बनाएंगे आप? अन्य चार चीजों को करके आपका स्थान भी वृंदावन हो जाएगा। और अंततः आपको क्या वृंदावन बनाना है? अपना मन वृंदावन बनाना है। मोर मन वृंदावन, महाप्रभु कहते हैं। तो अगर आप वृंदावन के बाहर भी रहते हो तो कोई परवाह नहीं, आप महा इस्कॉन मंदिर में जाया कीजिए, वो मंदिर भी वृंदावन से अभिन्न है। ठीक है, अच्छा आखिरी पढ़िए।
भक्ति के इन 64 बातों में हमारे मन, वाणी तथा शरीर से संबंधित सारे कार्य सम्मिलित हैं। जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है, भक्ति के विधानों का आदेश है कि हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई जाए। वे किस प्रकार सेवा में लगाई जाए, इसका वर्णन उपर्युक्त 64 बातों में किया गया है। अब श्री रूप गोस्वामी विभिन्न शास्त्रों से प्रमाण देकर इनमें से अनेक बातों को की प्रमाणिकता की पुष्टि करेंगे।
तो कृति साध्या हो गया ना, अभी कैसे कैसे क्या करना है, अभी आगे चल के रूप गोस्वामी विस्तार में प्रमाण देने वाले हैं। तो भी आइए हम शुरू करते हैं अध्याय 7। भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण अंग लक्षण। तो पहला वाला, पहला कौन सा है? प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना। रूप गोस्वामी ने इसको क्या कहा है? गुरु पादाश्रय। अच्छा, इसको घुमाएंगे जरा चार्ट को। तो कोई पढ़िएगा कि श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का कौन सा ये प्रमाण है? उनको पूछिए। उल्टा है, उधर ऐसे करना चाहिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, वो वाला लगाइए। हाँ, कोई पढ़िएगा 11वें स्कंद में क्या लिखा है, किताब में से पढ़िए। प्रबुद्ध मतलब नव योगेंद्रों में से एक हैं। हम पहले करभाजन मुनि, चामस मुनि, इनके भी उपदेशों को पढ़ चुके हैं ना पहले। तो अब यहाँ नव योगेंद्रों में से और हैं जिनका नाम है प्रबुद्ध। तो वो क्या कहते हैं महाराज निमि से, आइए सुनते हैं।
हे राजन, आप इसे निश्चित समझे कि इस भौतिक जगत में कहीं कोई सुख नहीं है। यह सोचना निरी भूल है कि यहाँ सुख है, क्योंकि यह जगत क्लेशों से ही पूर्ण है। जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाने का सच्चे दिल से इच्छुक है, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करके दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसकी शरण में जाना चाहिए। गुरु की पात्रता यही है कि उसे विवेचन तथा तर्क द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत होना चाहिए और अन्यों को इन निष्कर्षों के प्रति आश्वस्त कर सकना चाहिए। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त सांसारिक कामनाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण की है, उन्हें ही प्रामाणिक गुरु समझना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जिससे वह अपने को आध्यात्मिक आनंद के धरातल पर पहुंचा सके।
अभी इस श्लोक के पहले वास्तव में प्रभुपाद जी ने विस्तार में श्लोक का अनुवाद किया है। तो तो प्रभु तो मुनि निमि महाराज से कह चुके हैं कि हे महाराज, यह भौतिक जगत में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यहां तक कि स्वर्ग लोक में भी जो तथाकथित सुख है वो भी वास्तव में सुख नहीं है। वहां पर भी जो देवता हैं वो भी सदैव चिंतित रहते हैं। अगर उनके पास ऐश्वर्य है तो वो चिंतित रहते हैं कि भोग करने से जो उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उनका पुनः पतन होने का समय नजदीक आ रहा है, तो बहुत उदास हो जाते हैं। पुण्य और पाप की चर्चा हम कर चुके हैं ना, तो पुण्य करने से क्या मिलता है? भौतिक सुख, और विशेष करके स्वर्गलोक की प्राप्ति भी मिल सकती है। तो स्वर्गलोक में जब हम भोग करते हैं तो क्या होता है, पुण्यों को क्षीण हो जाते हैं, और जब ये पुण्य प्राय क्षीण हो गए पूर्ण, तो फिर क्या होता है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, फिर से पृथ्वी लोक में आ जाते हैं, जन्म लेते हैं। तो जब ये समय आ जाता है तो देवलोक के निवासी बड़े उदास हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं। जैसे कि समझ लीजिए, आपको बताया गया कि आपकी छुट्टी है, कोई बड़े जगह शिमला ऊटी में बड़े बड़े होटल में जाकर रहो, है ना, आपके सारे बिल्स जो है फ्री में आपको रहने की व्यवस्था दी जा रही है। तो आप जा रहे हैं और आपको कहा कि 10 दिन ही केवल, और फिर 9 दिन पे आप सोचा रे 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 अभी फिर से जाना होगा वापस घर, कैसे उदास हो जाते हैं ना। तो उसी प्रकार से स्वर्ग में पुण्य एकत्र करके ऊपर जाते हैं और फिर उसे आना पड़ता है। फिर आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भी रखते हैं, कभी भय रहता है कि असुर लोग आके कब्जा कर लेंगे हमारे कुर्सी का, इंद्रदेव भी कभी कभी चिंतित रहते हैं ऐसे बातों से। इसलिए स्वर्ग लोक में भी सुख नहीं है। इसीलिए तस्माद फिर ये श्लोक शुरू होता है। तो प्रबुद्ध मुनि क्या कहते हैं, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। तस्माद् अतः हे राजन, गुरुं प्रपद्येत, जिस व्यक्ति को वास्तविक सुख चाहिए जीवन में तो उसे क्या करना चाहिए, एक सद्गुरु के पास जाकर शरणागत होना चाहिए। प्रपद्य, तो प्रपद्यते, ये शब्द आप कई बार सुनेंगे, निपात प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन या प्रपद्येत, ऐसे जो शरणागति के शब्द हैं कई बार शास्त्रों में हमें पढ़ने में आते हैं। इसलिए आपको जाकर एक प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना चाहिए। और आपको कैसे होना चाहिए, कई बार लोग ये पूछते हैं कि गुरु के क्या लक्षण होने चाहिए। ये सवाल तो बहुत अच्छा है और महत्वपूर्ण है, और हर एक व्यक्ति को पूछना चाहिए, जानना चाहिए इसका उत्तर भी। परंतु इससे पहले हमें एक और प्रश्न पूछना चाहिए, वो क्या है, शिष्य कैसा होना चाहिए। केवल बैठ के हम गुरु के ऊपर हम जजमेंट देते रहे, ये ऐसा, ये ठीक गुरु नहीं है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं, उसके पहले हमें अपनी परीक्षा करनी चाहिए कि मैं किस तरह का शिष्य हूं, मुझ में शिष्य की योग्यता है या नहीं है। तो व्यक्ति को सबसे पहले पूछना चाहिए कि शिष्य को क्या चाहिए। जिज्ञासु हो, शिष्य जिज्ञासु होना चाहिए। किस बारे में जिज्ञासु होना चाहिए, यहां क्या बताया, जिज्ञासु हो श्रेय उत्तमम। श्रेय का मतलब क्या है, प्रेय और श्रेय। प्रेय, प्रेयस मतलब वो चीज जो कम समय में तुरंत ही जो हमें लाभदायक वस्तु होती है वो है प्रेयस। बहुत कम समय में तुरंत हमें उसका लाभ मिल सकता है, अभी अभी थोड़ा सा आनंद उसमें मिल जाएगा। और श्रेयस जो वास्तविक लाभ है दीर्घ काल में जो हमें लाभान्वित करेगा वो है श्रेयस। एक साधारण उदाहरण दे इसके लिए। एक विद्यार्थी है, कल उसकी परीक्षा है और वो पढ़ाई कर रहा है और उसके मित्र आते हैं कहते हैं अरे चलो चलो हम थोड़ा सिनेमा जाएंगे। अभी वो विद्यार्थी सोचता है अरे मन तो बहुत कह रहा है जाने के लिए और वहां जाएंगे तो खूब मौज करेंगे, खूब मजा करेंगे, अच्छा बहुत आनंद आएगा। तो वो क्या है? प्रेयस। क्षणिक जो सुख मिलने वाला है, तुरंत जो हमें लाभ मिलने वाला है, तथा कथित लाभ, उसको प्रेयस कहते हैं। लेकिन फिर वो सोचता है अरे नहीं नहीं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, परीक्षा में फेल हो जाऊंगा और परीक्षा में फेल हो गया तो आगे फिर सारे मेरे नंबर खराब हो जाएंगे, आगे फिर मैं कॉलेज में भर्ती नहीं, मैं कुछ नहीं हो पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, फिर अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाया तो अच्छी डिग्री नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, फिर मेरा सारा जीवन खराब हो जाएगा, वो ऐसे सोचेगा। तो वो श्रेयस अपने लंबी समय में दीर्घ काल में अपने भलाई के बारे में सोच रहा है, तो इसको श्रेयस कहते हैं। मतलब ये एक भौतिक उदाहरण है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रेयस का मतलब है भौतिक लाभ जो कि क्षणिक होता है, कम समय में ही प्राप्त किया जाता है, और श्रेयस मतलब हमारा वास्तविक लाभ या आध्यात्मिक लाभ। जैसे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं भागवत में, नते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः। वो कहते हैं कि नते विदुः, वो नहीं जानते हैं, कौन नहीं जानते, जनसाधारण, स्वार्थ, उनका स्वार्थ क्या है, उनका श्रेय है, जो वास्तविक उनका लाभ किसमें है वो नहीं जानते। गतिम ही विष्णु, कि विष्णु के शरण में जाना ही वास्तव में उनका श्रेयस है, नहीं जानते। फिर किस चीज को अपना हित मानते हैं? दुराशया ये वही अर्थ मानिना है, कि दुनिया के संसार के वस्तुओं को बहुत मूल्यवान समझते हैं, प्राप्त करने योग्य समझते हैं, और ऐसे चीजों को प्राप्त करने की इच्छा दुराशा है, ऐसे प्रहलाद कहते हैं। तो अब इन दुराशाओं को ही अपना श्रेयस बना लेते हैं, वास्तव में ये प्रेयस हैं, इनसे बहुत नुकसान होने वाला है आगे चल के, उनको क्षणिक लाभ मिलता है, क्षणिक सुख मिल जाता है, परंतु आगे चल के दुख मिलने वाला है। तो व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने अंतिम या सबसे ऊंचे सर्वोच्च लाभ को प्राप्त करने का प्रयास करे। इसलिए उत्तमम शब्द इस्तेमाल किया गया है। केवल ऐसा नहीं कि कोई लाभदायक चीज प्राप्त करना करने की इच्छा रखनी चाहिए शिष्य को, सबसे ऊंचा सर्वोच्च जो लाभदायक वस्तु है वो प्राप्त करना चाहिए। तो सर्वोच्च वस्तु क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। तो शिष्य को चाहिए कि वो अपना वास्तविक लाभ ध्यान में रख के ऐसे सद्गुरु के शरण में जाए, शरणागति ले। तो आगे गुरु के लक्षण बताए हुए हैं। गुरु के लक्षण क्या होने चाहिए? शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम्। शाब्दे शब्द, शब्द ब्रह्म से शाब्द आया है, शब्द आपने सुना है ना। प्रमाण किस प्रकार के होते हैं? शब्द प्रमाण, और उसके पहले अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो श्रेष्ठ प्रमाण कौन सा है? शब्द प्रमाण। तो शास्त्रों को भी कभी शाब्दे शब्द बताया जाता है, शब्द ब्रह्म। तो शाब्दे निष्णातम, निष्णातम मतलब बहुत ही निपुण। तो जो शास्त्रों में बहुत निपुण है, विशेष करके भक्ति शास्त्रों में, ऐसे सद्गुरु को निपुण होना चाहिए, उनको जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए, गीता क्या है, भागवत क्या है। और परे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं परे ब्रह्मणी, मतलब भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन का मार्ग, इसमें भी बड़े निपुण होने चाहिए। शाब्दे परेच निष्णातम का मतलब है कि जो व्यक्ति शास्त्रों को भली भांति जानते हैं और जो श्रवण कीर्तन के पथ में भी अग्रसर हुए हैं, साथ साथ उपशम आश्रयम, आश्रय उन्होंने लिया है किस सिद्धांत का, जो स्थिर है किस चीज में, उपशम, अपने सारे जो भी गलत चीजें हैं भौतिक चीजें हैं उनके विचार को शमन कर लिया है। जो भौतिक भौतिक चीजों से निरासक्त हैं, ठीक है। अभी आप समझाइए ये शब्द, ये श्लोक का अर्थ क्या है, कौन समझाएंगे, शब्दार्थ करके समझाइए आप। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, जब भी आप कोई महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ेंगे ना, शब्दार्थ जानने का प्रयास कीजिए, फिर बहुत अच्छा होगा आगे पढ़ाई के लिए। ब्रह्मणी मतलब भगवान, परब्रह्म। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं परे परे, परे मतलब जो परे हैं, परे ब्रह्मणी श्रवण कीर्तन का मार्ग, इसमें ऐसा अनुवाद देते हैं। परे से, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि परे ब्रह्मणी का मतलब इसको उल्लेख है किसका, श्रवण कीर्तन का, जो भगवान में है वो भक्ति के दृष्टिकोण से देख रहे हैं इस श्लोक को। तो संक्षेप में कोई वर्णन कीजिए इस श्लोक का, अनुवाद बताइए या इसका सार बताइए।
उसे प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और
क्यों ग्रहण करना चाहिए? अतः क्यों, अतः क्यों ग्रहण, गुरु के आश्रय क्यों ग्रहण करना चाहिए?
आध्यात्मिक लाभ के लिए।
अगर वो वास्तविक सुख चाहता है, पिछला श्लोक था ना हमने वर्णन किया था, अगर वास्तव में कोई सुखी होना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, गुरु के शरण में जाना चाहिए। और उसकी कैसी भावना होनी चाहिए,
वह जिज्ञासु होना चाहिए।
किन चीजों के बारे में जिज्ञासु?
श्रेय उत्तम,
श्रेय मतलब किस चीज के बारे में,
दीर्घकालीन तक जो लाभदायक लाभदायक होगा, यानी कि आध्यात्मिक जीवन में जो उसके लिए महत्वपूर्ण होगा,
उसे सहायता करे, जो वास्तव में लाभदायक है, जिस जो लाभ हमें दीर्घ काल में चल के पता चलेगा वो सच्चा लाभ है, जो उत्तम उत्तम श्रेय है, उसके बारे में उसको वो जिज्ञासु होना चाहिए।
और फिर बाद में नीचे के दो लाइन गुरु के बारे में है कि जो गुरु है वे शाब्दे शास्त्र में बहुत निपुण होने चाहिए और
श्रवण कीर्तन में भी,
श्रवण कीर्तन में भी शास्त्र में निपुण होकर श्रवण कीर्तनों में कीर्तन में
मग्न होने चाहिए। और उपशमाश्रयम, उपशम आश्रयम, आश्रय लेना चाहिए मतलब वो स्थिर होने चाहिए। किस चीज में स्थिर होने चाहिए? उपशम, भौतिक आसक्ति से बिल्कुल को काट देना चाहिए, अर्थात भौतिक संसार से निरासक्त होने चाहिए, विरक्त होने चाहिए, ठीक है। आगे प्रभुपाद जी काफी भारी तात्पर्य आगे दे रहे हैं, पढ़िएगा।
तात्पर्य यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को गुरु न बनाए जो एक नंबर का मूर्ख हो, जिसे शास्त्रीय आदेशों के अनुसार दिशा ज्ञात न हो, जिसका चरित्र संदेह हास्पद हो, जो भक्ति के सिद्धांतों का पालन न करता हो, अथवा जिसके इंद्रिय तृप्ति करने वाले छह माध्यमों पर विजय प्राप्त न की हो। इंद्रिय तृप्ति के छह माध्यम है जीव, उपस्थ, उदर, क्रोध, मन तथा शब्द। जिसने इन छहों को वश में करने का अभ्यास किया हो, उसे विश्व भर में शिष्य बनाने की अनुमति है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए ऐसा गुरु बनना एक परीक्षा की घड़ी है। प्रामाणिक गुरु की शरण प्राप्त करने वाला भाग्यशाली व्यक्ति बिना किसी संदेह के आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग का पथिक बनता है।
तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु कौन नहीं है और कौन है। तो प्रामाणिक गुरु कौन हो सकता है, इसके बारे में श्लोक आपने कौन सा पढ़ा है उपदेश अमृत में? बोलिए तो इसका मतलब अरे वाह बहुत अच्छा, पूरे कंठस्थ अच्छी तरह से हो गया है सब। एग्जाम में है, आया था, अच्छा हो गया एग्जाम, अच्छा वेरी गुड। तो ये है सच्चे गुरु, इसी श्लोक का अनुवाद यहाँ पर प्रभुपाद जी ने दिया है। साधारण तो यही नियम है, परंतु शास्त्रों में ऐसे भी बताया जाता है कि आगे उपदेश अमृत में आपने पढ़ा होगा तात्पर्य, प्रभुपाद जी कहते हैं ना कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर मध्यम भी ऐसे करते हैं, परंतु शिष्य को चाहिए कि जो उत्तम है उनको चुने, उत्तम नहीं हो तो फिर मध्यम, श्रेष्ठतम जो है को चुने। अच्छा तो ये हुआ पहला नियम, पहला अंग। दूसरा पढ़िएगा।
गुरु से दीक्षा लेना और उससे उपदेश प्राप्त करना, श्री कृष्ण दीक्षा।
दीक्षा अच्छा, रूप गोस्वामी इसे कहते हैं श्री कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, आप लिख सकते हैं सर। ये जो भी नियम है ना, उनका हम संस्कृत भी आपको बताएंगे, तो आप पेंसिल में आपकी किताबों में लिखते जाइएगा साथ साथ, श्री कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम। पहला था गुरु पादाश्रय और दूसरा है श्री कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम। दीक्षा है वो पद्धति जिससे भगवान के साथ शिष्य का संबंध स्थापित हो जाता है। अच्छा पढ़िएगा फिर से। प्रबुद्ध मुनि क्या कहते हैं महाराज निमि से?
हे राजन, शिष्य को गुरु को गुरु रूप में ही नहीं अपितु भगवान और परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना होता है। दूसरे शब्दों में शिष्य को चाहिए कि गुरु को ईश्वर रूप में माने, क्योंकि गुरु कृष्ण का बाह्य स्वरूप होता है। इसकी पुष्टि हर शास्त्र में हुई है और शिष्य को चाहिए कि गुरु को इसी प्रकार रूप में इसी रूप में स्वीकार करें।
ठीक है, तो यहाँ ये महत्वपूर्ण सिद्धांत को बतला रहे हैं प्रबुद्ध मुनि कि गुरु को भगवान के समान समझना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। गुरु भगवान है, है कि नहीं है? नहीं है, फिर भी भगवान के समान उनका सम्मान किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है। बहुत अच्छा, तो क्या मतलब है इसका?
कि गुरु को सारे शास्त्र यही कहते हैं कि हमें गुरु को ऐसे भगवान के समान रिस्पेक्ट देनी चाहिए, परंतु फिर भी गुरु भगवान नहीं है, उनको ऐसा इसलिए इतने रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि वो गुरु भगवान को बहुत प्रिय होते हैं।
किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ठीक है, और साथ साथ दीक्षा लेने के बाद उनसे आदेश भी प्राप्त करना चाहिए, शिक्षणम शिक्षा भी प्राप्त करनी चाहिए। तो क्या शिक्षा है आगे पढ़िए।
मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु से अत्यंत गंभीरता एवं आदर पूर्वक श्रीमद् भागवत सीखे। श्रीमद् भागवत का श्रवण एवं प्रवचन ऐसी धार्मिक विधि है जो मनुष्य को भगवान की सेवा तथा प्रेम के पद तक ऊपर ले जाती है।
तो बड़े ध्यान से आदेश का पालन करना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, और विशेष करके श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन करना, ये उन्नति का मार्ग बतलाया गया है। और शिष्य का भाव कैसे होना चाहिए पढ़िए।
शिष्य की मनोवृत्ति प्रामाणिक गुरु को प्रसन्न रखने की होती है, होनी चाहिए, तभी वह आसानी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है और श्री रूप गोस्वामी और आगे बतलाएंगे कि किस प्रकार उस व्यक्ति को सब कुछ सरलता से प्रकट हो जाता है जिसे ईश्वर तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होती है।
तो ये है शिष्य का भाव। इसके बारे में श्वेताश्वतर उपनिषद में कोई श्लोक है, आपको ये पता है? आप सुन चुके हैं, भगवद गीता में पढ़े होंगे आपने, तात्पर्य में नहीं, तात्पर्य में। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। फिर कौन से शास्त्र का है ये? तस्यैते कथिता ही अर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। क्या मतलब है श्लोक का? यस्य देवे पराभक्तिर, यस्य देवे भगवान में, तथा देवे यथा गुरु, जैसे भगवान में श्रद्धा वैसे गुरु में भी श्रद्धा, तो फिर क्या होगा? तस्यैते कथिता ही अर्थः, जो शास्त्रों का अर्थ है, जो मूल मतलब है, वो क्या होगा? प्रकाशन्ते, ऐसे महात्माओं को ये ज्ञात हो जाएगा। तो शास्त्रों में क्या लिखा है, शास्त्रों का समझ अगर हमें चाहिए तो पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के माध्यम से हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। श्रद्धाहीन व्यक्ति को ये जानकारी नहीं मिलेगी। श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह है दूसरा नियम कि हमें गुरु से दीक्षा लेना चाहिए और दीक्षा लेकर शिक्षा भी ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, तीसरा क्या है?
श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना।
और इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं विश्रम्भेण गुरोः सेवा, विश्रम्भेण गुरोः सेवा। श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना, विश्रम्भेण श्रद्धा पूर्वक, विश्रम्भेण ण श्रम वाला, हाँ, विश्रम्भेण गुरोः सेवा। अच्छा, आचार्य मां विजानी हम ये लिखा है क्या? मैंने है इसमें है ना, तो वो ले लगाएंगे। अच्छा, कोई पढ़िएगा। हाँ पढ़िएगा कोई तीसरा गुण।
भगवान श्री कृष्ण का कथन है, हे उद्धव, गुरु के मेरा प्रतिनिधि ही नहीं अपितु साक्षात मेरा स्वरूप ही मानना चाहिए। उसे कभी भी सामान्य पुरुष नहीं मानना चाहिए, न ही सामान्य पुरुष की भांति उससे द्वेष रखना चाहिए। गुरु को सदैव भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए और उसकी सेवा करने से
सारे देवताओं की सेवा हो जाती है।
तो बिल्कुल सही सही श्लोक का अनुवाद प्रभुपाद जी ने यहाँ पर किया है। तो श्लोक क्या है? आचार्य मां विजानीयान् नाव मन्येत कर्हिचेत् न मर्त बुद्ध्या बुद्ध्यासुयेत सर्वदेव मयो गुरुः। अच्छा, आचार्याम आचार्यम आचार्य को मान माम माम होना चाहिए, माम विजानीयान। तो ये विजानीयान मतलब जान लो। क्या जान लो? कि आचार्य मैं ही हूं। आचार्य माम विजानीयान, कि आचार्य और मुझ में कोई अंतर नहीं है। न अवमन्येत कर्हिचेत, अवमन्येत मतलब कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। कर्हिचेत किसी भी समय, न अवमन्येत अनादर नहीं करना उनका कभी, और न मर्त्य बुद्ध्या असुयेत। मर्त्य बुद्ध्या, बुद्ध्या मर्त्य मतलब एक साधारण व्यक्ति। इस पृथ्वी लोक को मर्त्य लोक कहते हैं। मर्त्य लोक मतलब जहां सब लोगों की मृत्यु होती है, तो साधारण व्यक्ति। तो गुरु को कभी साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। न मर्त्य बुद्ध्या, मर्त्य बुद्ध्या मतलब कि ऐसी बुद्धि ऐसी मति हमारी नहीं होनी चाहिए कि यह भी एक साधारण मनुष्य है, अन्यों की तरह है। इसलिए क्या नहीं करना चाहिए? असूयेत। असूया क्या है? ईर्ष्या, ईर्ष्या द्वेष। अनसूया ये नाम तो आपने सुना होगा, अनसूया। अनसूया मतलब जो ईर्ष्या नहीं करते हैं। भगवद गीता में भी ये शब्द आता है। कौन सा श्लोक बताइए? अनसूयवे भक्तों से मैं सखा चेती रहस्यम हेतत उत्तमम। कि भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो। तो जो व्यक्ति असूया रखता है अपने हृदय में, ईर्ष्या रखता है, वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यहां कहा जाता है कि न मर्त्य बुद्ध्या, गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए और कभी भी उनसे ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। और सर्वदेव मयो गुरुहु, कि ऐसे समझ लेना चाहिए कि गुरु को संतुष्ट किए जाने पर सर्व देवता गण जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। 11वें स्कंद में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक। ऐसे तो भागवत के हर एक स्कंद में है, परंतु 11वें स्कंद में भी। अच्छा, चौथा बताइए।
साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण।
साधु वर्तमानु वर्तनम, साधु वर्तमानु वर्तनम। साधु वर्तम अच्छा पथ। साधु की यहां दो शब्द हो सकते हैं, एक तो जो साधु है व्यक्ति हैं, और साधु मतलब अच्छा। जैसे कोई व्यक्ति सभ्य समाज में जब कोई बैठक वगैरह होता है, कोई बहुत अच्छी बात कहता है, तो लोग क्या कहते हैं? साधु साधु साधु, बहुत अच्छी बात कही आपने। साधु वर्तमान, वर्तमान आपको भेद करके दे रहे हैं, साधु वर्तमानु वर्तनम, साधु वर्तमानु वर्तनम, वर्तमा अनुवर्तम। साधु वर्तमानु वर्तनम, साधु वर्तमान में अनुवर्तनम मतलब उस पथ में जाना। ये सब लिखने के लिए हमें समय नहीं रहा, नहीं तो आप यहां लिख के कर लेते, लेकिन आप लिख पा रहे हैं ना। हाँ पढ़िएगा, स्कंद पुराण में क्या कहा है।
स्कंद पुराण में सलाह दी गई है कि भक्त को चाहिए कि वह पूर्व आचार्यों तथा साधु पुरुषों का अनुगमन करे, क्योंकि इस तरह से उसे वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है और शोक करने या अपने उन्नति के लिए घबराने की गुंजाइश नहीं रह जाती।
ये बहुत ही सुरक्षित मार्ग है, महात्माओं के पदचिन्हों में चलना, इसमें कोई खतरा नहीं है। वो चल चुके हैं पहले, हम उसी मार्ग में जा रहे हैं। अच्छा समझ लीजिए कि आप एक स्थान में जा रहे हैं और आप कभी गए नहीं है वहां पर, और आप पूछते हैं कि अच्छा वो स्थान में कैसे पहुंचना चाहिए, तो व्यक्ति कहता है दो मार्ग हैं। एक मार्ग यहाँ है जो सभी लोग, हम लोग सब जाते आते रहते यहां से, तो ये रास्ते से आप जाएंगे तो आपको उस स्थान मिल जाएगा। लेकिन हमने सुना है यहां से भी कोई रास्ता है, लेकिन वहां से कोई गया नहीं है। आप चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन हम तो गए नहीं है, तो आप क्या करेंगे? हाँ पहला वाला जो है वही आप लेंगे। क्यों? सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? पहले लोग गए हैं, अभी भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं भक्ति मार्ग में। हम हैं क्या? इतने सारे लोग हैं, सभी उसी पथ पे चल रहे हैं, और इतिहास में भी इतने सारे भक्त जा चुके हैं और सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तो हमारे लिए सुरक्षित है कि केवल हम महात्माओं के पद चिन्हों में चलते रहें। महाजनों ये नगतः सपंथा। आगे ब्रह्मयामल नाम के शास्त्र में क्या कहा गया है। अच्छा हाँ ठीक है, पढ़िए।
यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है तो उसे अपने कार्यों से भक्ति में प्रगति करने में कभी सहायता नहीं मिलेगी, उल्टे वह भक्ति के निष्ठावान साधकों के मार्ग में विघ्न खड़ा करेगा।
इसके लिए ये श्लोक है, यही श्लोक का अनुवाद है। ये श्लोक आपने कभी सुना है या पढ़ा है? प्रभुपाद जी कई बार इस श्लोक को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। श्रुति ये शुरू होना चाहिए, श्री नहीं, श्रु। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पातायैव कल्पते। अगर कोई व्यक्ति भक्ति में स्थिर भी हो, वास्तव में स्थिर नहीं है, लेकिन ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि वो स्थिर है भक्ति में, एकांतिकी। एकांतिकी मतलब क्या है? बिल्कुल एकाग्र चित्त से वो भक्ति कर रहा है, ऐसे हमें लग रहा है। वास्तव में वो नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि वो एकांतिकी भक्ति कर रहा है। एक अंत, उसका गंतव्य, उसका उद्देश्य एक ही है कि हमें भक्ति ही प्राप्त करना है, एकांतिकी भक्ति। स्त्रीलिंग है भक्ति, इसलिए की हो गया एकांतिकी। अगर कोई व्यक्ति एकांतिकी हरेर भक्ति कर रहा है, परंतु क्या, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि रात्र को शास्त्र है उनके विधियों को का पालन नहीं कर रहा है तो फिर क्या हो जाता है? उत्पात एव कल्पते, उत्पात खड़ा हो जाता है सारे समाज में। श्रुति मतलब क्या? वेद उपनिषद आदि जो सुनकर जाने जाते हैं। स्मृति जो सुनने के बाद जो स्मरण किए जाते हैं, कौन से हैं ये शास्त्र? स्मृति, पुराण, विशेष करके जो पुराण है उनको स्मृति कहते हैं। और ये अन्य हैं जैसे महाभारत है, रामायण है, इनको इतिहास कहते हैं, परंतु कभी कभी उनको भी स्मृति के वर्ग में माना जाता है। पुराण भी यहां है, स्मृति भी, ऐसे कई शास्त्र हैं स्मृति शास्त्र। तो श्रुति स्मृति पुराण आदि क्या जैसे अभी मनुस्मृति है, मनु संहिता है, और साथ साथ में पुराण भी है। पुराण भी माने जाते हैं, यहाँ अलग से लिखा हुआ है रूप गोस्वामी ने, लेकिन पुराणों को भी स्मृति स्मृति मानते हैं। वैसे अच्छा, पंचरात्र जैसे नारद पंचरात्र है, हम पिछले अध्याय में पढ़ रहे थे हय शीर्ष पंचरात्र है ना, तो ऐसे भी कई शास्त्र हैं। अगर ऐसे शास्त्रों के ऊपर हमारी भक्ति आधारित नहीं है तो हालांकि ऐसे प्रतीत हो कि हम बहुत एकांतिकी भक्ति कर रहे हैं, हम बहुत ही निष्ठावान हैं हमारी भक्ति में, फिर भी वो भक्ति ठीक नहीं है। ऐसे भक्ति करने से केवल उत्पात ही पैदा हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रों के विधि अनुसार ये नहीं हो रहा है। और विशेष करके प्रभुपाद जी यहां किनका उदाहरण दे रहे हैं, पढ़िए। सहजियों का पढ़िए। तो जो बहुत ही सस्ता लेते हैं भक्ति को, ऐसे सहज लेते हैं, इनको सहजीय कहते हैं। और ये लोग अपने आप को ऐसा पेश करते हैं समाज में कि मानो वो बहुत एकांतिकी भक्ति कर रहे हैं, बहुत ही उन्नतशील हैं, बहुत ही आगे बढ़े हुए हैं भक्ति में, उनकी निष्ठा बहुत है, ऐसे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने। परंतु उनकी भक्ति, उनके विधि विधान शास्त्रों पर आधारित नहीं है। फिर क्या होता है? जो मासूम लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, वो भी आते हैं उनके पीछे और वो भी ऐसा करना शुरू करते हैं, तो उत्पात हो जाता है, क्योंकि सारे लोग भक्ति के गलत सिद्धांतों को का पालन करते हैं, सही भक्ति नहीं करते। एक बार एक भक्त गए थे कहीं, हमारे इस्कॉन के भक्त हैं, वो कहीं जा रहे थे बंबई में एक बार, और उन्होंने देखा कि एक सभागृह है जिसमें एक प्रवचन चल रहा था, तो उन्होंने बाहर वो विज्ञापन आदि बैनर वगैरह देखा और वो गए कि देखते हैं क्या है। कोई वृंदावन से कोई प्रवक्ता थी, एक महिला थी, और वो अंदर गए तो देखा कि एक आदमी से पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या है ये, कौन है, और सभी लोग रो रहे हैं वहां। तो देखा कि क्या हो रहा है, तो बोले नहीं वो हमको रोना सिखा रही है, हमको बोल रहे कृष्ण के लिए कैसे रोना चाहिए। तो ऐसे नहीं होता है भक्ति। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि ऐसे जो आंसू हैं वो वेदों के निष्कर्षों को धो डालते हैं। अर्थात सारे गलत चीजें हैं, अपसिद्धांत हैं ये। एकदम सस्ता कर देना कि कोई आदमी बेचारा सड़क से चलता हुआ है और रोना शुरू कर दे, ये क्या कोई भक्ति हुई? नहीं। भौतिक ऐसे रोने वाले तो बहुत रोते हैं, लेकिन ये किस प्रकार के आंसू हैं जो भाव भक्ति के स्तर में आते हैं। ऐसा नहीं कि बस कोई व्यक्ति गया और अचानक उसे रुलाना शुरू कर दिया कि भगवान के लिए रो। उसको पता होना चाहिए शास्त्रों का सिद्धांत क्या है, कृष्ण कौन है, हम कौन है, ये सब कुछ उसको पता चले। जब वो साधन भक्ति करे, रागनु की अवस्था को पार करके भाव भक्ति में आए, तब उसको पता चलेगा कि ये आंसू क्या है, तब स्वाभाविक रूप से आंसू आएंगे। अन्यथा ये एक भावुकता हो जाती है, सेंटिमेंटलिज्म। भावुकता नहीं होनी चाहिए। इसलिए श्रुति स्मृति पुराण आदि शास्त्रिम विधिम इनके अनुसार होना चाहिए। बिना हो गया, बिना इनके हो गया तो उत्पाता यही वकल्पते। ठीक है, आगे बढ़िए। अब उदाहरण दे रहे हैं रूप गोस्वामी बौद्ध धर्म की, कि कैसे लोगों को लगता है कि ये लोग तो बहुत धार्मिक हैं, परंतु कैसे ये अधर्म है, इसके बारे में यहां पर चर्चा हो रही है। पढ़िएगा।
भगवान बुद्ध का जन्म एक श्रेष्ठ क्षत्रिय राजकुल में हुआ था, किंतु उनका दर्शन वैदिक निष्कर्षों के अनुकूल नहीं था, अतएव उनके दर्शन का बहिष्कार किया गया। यह बौद्ध धर्म हिंदू राजा महाराज अशोक के संरक्षण में सारे भारत तथा पड़ोसी देशों में फैल गया, किंतु महान शिक्षक शंकराचार्य के आविर्भाव के बाद यही बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से निष्कासित कर दिया गया।
तो बौद्ध धर्म का बैकग्राउंड जो है वो बताया जा रहा है यहाँ पर। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हालांकि बुद्ध देव का जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था, कहां पर?
नेपाल
में। नेपाल में। स्कूल का इतिहास याद है ना सबको, कहां पर जन्म हुआ था? लुम्बिनी। याद है ना, सातवें आठवीं कक्षा में आप सबने पढ़ा होगा। कौन सी कक्षा में पढ़ा? आठवीं में पढ़ा था ना। तो अशोक राजा थे, उन्होंने राजकीय आश्रय दिया इस बौद्ध धर्म को, इसलिए फैल गया। अशोक भी बौद्ध बन गए, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और उन्होंने आगे बढ़िए।
शास्त्रों की परवाह न करने वाले बौद्ध या अन्य धर्मावलंबी कभी कभी यह कहते सुने जाते हैं कि भगवान बुद्ध के अनेक भक्त हैं जो उनकी भक्ति करते हैं, अतएव उन्हें भक्त माना जाता है, माना जाना चाहिए। इस तर्क के उत्तर में रूप गोस्वामी कहते हैं कि बुद्ध के अनुयायियों को भक्त नहीं कहा जा सकता। यद्यपि भगवान बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना जाता है, किंतु ऐसे अवतारों के अनुयायियों का वेद ज्ञान बढ़ा चढ़ा नहीं होता। वेदों के अध्ययन का अर्थ है कि भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, अतएव जो भी धार्मिक सिद्धांत भगवान की श्रेष्ठता को नकारता है वह स्वीकार्य नहीं है और नास्तिकवाद कहलाता है। नास्तिकवाद का अर्थ है वेदों के प्रमाण की अवज्ञा एवं उन महान आचार्यों की अवहेलना करना जो जन सामान्य के लाभ हेतु वैदिक शास्त्रों की शिक्षा देते हैं।
बहुत महत्वपूर्ण है ये। बौद्ध धर्म का वर्णन है कि लोग, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर ऐसे बाहरी रूप से प्रतीत हो कि ये लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन गहराई में जाके पता चलता है कि वास्तव में भक्त नहीं है ये। उसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, ऐसे हो सकता है कि थोड़े लोग सोचें ये लोग भी भक्त हैं, आखिर बुद्ध भी कृष्ण हैं और ये लोग भी धार्मिक हैं तो भक्त हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे लोगों को हम भक्त नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्यों नहीं मान सकते ऐसे लोगों को भक्त, बताइए। पढ़ के अभी पढ़ा ना,
क्योंकि इनका वेद ज्ञान बढ़ा चढ़ा नहीं होता।
हाँ, क्योंकि वेद का ज्ञान बढ़ा चढ़ा नहीं होता, और जो वो कहते हैं, जिस चीज को वो मानते हैं, वो शास्त्रों में नहीं है। नास्तिकवाद का क्या 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 परिभाषा दी है प्रभुपाद जी ने यहाँ पर? वेदों के प्रमाण की अवज्ञा। जो वेदों को नहीं मानते, जो शास्त्रों को नहीं मानते, वो नास्तिक हो गए। जो भगवान को नहीं मानते और जो भगवान के शास्त्रों को नहीं मानते वो नास्तिक हैं। तो बौद्ध लोग वेदों को नहीं मानते हैं। आपने कभी चर्चा की है बौद्ध वालों से? वो कहेंगे हम नहीं मानते वेदों को, तो नास्तिक कहलाते हैं। हालांकि वो धार्मिक कहलाते हैं अपने आप को, परंतु ये कैसा धर्म है? ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों नास्तिक धर्म है, दोनों भगवान को मानते नहीं है। जैन धर्म भी ये नास्तिक धर्म है, क्योंकि भगवान को नहीं मानते। जो वास्तव में जैन दर्शन जानता उससे बात कीजिए आप, जो ज्यादा गहराई में नहीं जानते हैं ना वो मानते हैं सब, क्योंकि उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है अपने धर्म के बारे में। लेकिन जो वास्तव में जैन धर्म जानते हैं वो आपको बताएंगे। कई बार हमारी चर्चा हो चुकी है जैनियों के साथ, वो तो साफ साफ कहते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान नाम की चीज नहीं है। और बौद्ध वो भी कहते हैं कि आत्मा ही नहीं है तो भगवान कहां से हो, आत्मा ही नहीं है, शून्य है, सब कुछ शून्य ही है। तो इनका जो सिद्धांत है वो शास्त्रों पर आधारित नहीं है, इसलिए जैन और बौद्ध लोगों को हम भक्त नहीं मानते हैं। हालांकि वो लोग भी मंदिर में जाते हैं, वो लोग भी उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके भी भजन कीर्तन होते हैं, कीर्तन उनके स्टाइल उनका होता है, उनके पद्धति के अनुसार वो लोग कीर्तन करते हैं, भजन होते हैं उनके, वो लोग करते हैं। हाँ, जो भी अलग अलग उनके सिद्धांतों के अनुसार होता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग भक्त हैं। क्यों? क्योंकि वेदों के ऊपर आधारित नहीं है। और हालांकि बुद्ध श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, फिर भी बुद्ध की बातों को हम नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो अगर स्वयं श्री कृष्ण भी आए और कोई उल्टी बात बताएं जो शास्त्रों में नहीं है तो उनको नहीं मानेंगे। कृष्ण लीला में भी ये हुई घटना ऐसी, बताइए। कृष्ण लीला गोवर्धन के पहले, गोवर्धन लीला के पहले क्या हुआ? पढ़ा है ना आपने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम? नंद महाराज क्या करने जा रहे थे? इंद्र की पूजा करने जा रहे थे। तो श्री कृष्ण उनके पास आए, क्या बोलने लगे? पूजा बंद कीजिए, इंद्र कौन है और श्रेष्ठ कौन है, क्या है? श्रेष्ठ हमारे कर्म है। वो कर्म मीमांसा सिद्धांत बोलने लगे, जो नास्तिक सिद्धांत है। कर्म ही सब कुछ है। जब हम ऐसा कर्म करते हैं तो कर्म का फल देवताओं को देना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म ही श्रेष्ठ है। जैनी लोग भी ऐसा ही बोलते हैं कि कर्म श्रेष्ठ है, भगवान का क्या है इसमें, भगवान नहीं है, कर्म है श्रेष्ठ, कर्म ही भगवान है। परंतु वो ये नहीं जानते कि ठीक है कर्म श्रेष्ठ है और कर्म के फल आपको मिलेंगे, परंतु फल देंगे कौन? ये महत्वपूर्ण बात है ना। कर्म का फल प्रदान करने वाला तो कोई होना चाहिए, खुद ब खुद कर्म का फल कहां से आएगा? कौन निर्णय करता है कि इस कर्म के लिए ये फल मिलेगा, और कौन ये देखता है कि आपको ये फल मिलकर ही रहेगा, बाय चांस नहीं मिला तो? कौन देखता है, कौन जिम्मेदारी लेता है इसकी? तो कोई तो होना चाहिए, वो है भगवान। तो कृष्ण भगवान ऐसे ही अपने पिताजी को किसी न किसी तरह से इंद्रदेव की पूजा से हटाना चाहते थे और गोवर्धन की पूजा कराना चाहते थे। तो जानबूझकर उन्होंने गलत सिद्धांत कहा, कर्म मीमांसा सिद्धांत कहना शुरू कर दिया उन्होंने। और नंद महाराज तो बेचारे, इतना स्नेह था उनका कृष्ण के प्रति, जो भी कृष्ण कहते मान लेते, ठीक है चलो कृष्ण तुम कहते हो तो हम कर लेते हैं। अभी कोई कहेगा कि श्रीमद भागवत के श्लोक उठा लेगा, देखो कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, तो हम मानेंगे? हम स्वीकार नहीं करेंगे उसको, क्योंकि कृष्ण का उद्देश्य क्या था उस समय? कृष्ण का उद्देश्य ये नहीं था कि ये सत्य के रूप में प्रस्तुत करना समाज में। उनकी एक उनकी एक योजना थी कि नंद महाराज को इंद्रदेव की पूजा से हटाना है। तो उसी प्रकार से बुद्ध, हालांकि श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, शक्त्यावेश अवतार हैं, फिर भी जो बुद्ध देव कह रहे हैं उसको हम नहीं मानते, उनका धर्म हम नहीं मानते, क्योंकि इस धर्म में जो भी है वो वेदों के विरुद्ध है। ठीक है ना?
फिर ऐसे तो कोई कह सकता है कि चेतन, वही बात आ जाती है चेतन महाप्रभु के नाम को, हरे राम से हरे कृष्ण।
नहीं, ये भगवान का नाम है, भगवान के नाम में ऐसे कोई समस्या नहीं है। भगवान का नाम लेने में आप ले सकते हैं, हम क्यों मानते हैं, क्योंकि वो भगवान है, भगवान का नाम लेने के लिए हमें बोल रहे हैं। इसलिए यह हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, और जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी थी वो भी सारे शास्त्रों के आधार पर है, सनातन गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को। इसलिए रूप गोस्वामी ने इतने सारे शास्त्रों का प्रमाण दिया है कि जो भी महाप्रभु ने मुझे सिखाया है वो शास्त्रों पर आधारित है, ताकि हम जान लें कि ये प्रामाणिक है। ठीक है?
हाँ, बुद्ध भगवान ने कहा मतलब उस समय परिस्थितियां ऐसी थी, इसीलिए ऐसे धर्म की स्थापना की और ऐसी बातें कही, तो उस समय जिन लोगों ने उनके इस धर्म का पालन किया उनका तो
प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, आइए इसको पढ़ ही लेते हैं, आप पढ़ लीजिए, आप ही पढ़िए, आपका उत्तर मिल जाएगा।
जैसे भी श्रीमद् भागवत में बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना गया है, किंतु उसी ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध का अवतार नास्तिक जनों को गुमराह करने के लिए हुआ, अतएव उनका दर्शन नास्तिकों को गुमराह करने के निमित्त है तथा स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई पूछता है कि कृष्ण को नास्तिक सिद्धांतों को फैलाने की क्या आवश्यकता थी, तो इसका उत्तर होगा, यह भगवान की इच्छा थी कि वेदों के नाम पर की जाने वाली हिंसा का अंत हो। उस समय तथाकथित धर्मज्ञ वेदों का सहारा मिथ्या रूप से मांसाहार जैसे हिंसक कृत्य को न्याय संगत करने के लिए ले रहे थे। भगवान बुद्ध पतित लोगों को वेदों की ऐसी मिथ्या व्याख्या से दूर रखने के लिए आए। यही नहीं, भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को नास्तिकता का उपदेश दिया जिससे वे उनका अनुसरण करें और इस तरह भगवान बुद्ध या कृष्ण की भक्ति के चंगुल में आ जाए।
तो आपके प्रश्न का उत्तर आखिरी वाक्य है, उनको भी लाभ हो रहा है, जो बुद्ध को मानते हैं थोड़ा लाभ हो रहा है, लेकिन जिस उनको भक्त फिर भी हम नहीं मान सकते, क्योंकि जिस सिद्धांत का पालन वो करते हैं वो सही नहीं है। तुम बुद्ध देव ने ऐसे गलत सिद्धांत को क्यों रखा था सामने, प्रचार क्यों किया था? वेदों के बल पर मिथ्या रूप से पशुओं की हत्या हो रही थी, इसलिए इसको रोकने के लिए। लोगों ने कहा, जब ब्राह्मणों ने विरोध किया कि आप तो ऐसा कहते हैं कि शास्त्र पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए लेकिन वेदों में ऐसे लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा फिर आपके वेदों में हम विश्वास नहीं करते हैं। शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं बुद्ध देव, विशेष कार्य के लिए यहाँ पर आते हैं।
जैसे आपने पहले श्लोक बताया था, उस श्लोक के हिसाब से जो भगवान के जितने भगवान और भगवान के जितने विस्तार, उन सब की जो भक्ति करता है वो भक्त होता है, उनके धाम में जाता है। तो यहाँ पे बुद्ध देव के जो मतलब जो एक तरह से भक्त या जो उनकी पूजा करते हैं तो भगवान मानते, तो उनका क्या होता है?
अच्छा प्रश्न है, प्रश्न है कि पहले ये बताया गया है कि भगवान, जब हम अन्याभिलाषिता शून्यम श्लोक की चर्चा कर रहे थे तो ऐसे बताया गया था कि कृष्ण, कृष्णानुशीलनम में कृष्ण जो है इसका मतलब है कृष्ण और उनके अनन्य विस्तार, अनेक विस्तार। तो अगर बुद्ध भी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं तो उनकी जो सेवा कर रहे हैं वो वैकुंठ जगत में क्यों नहीं चले जाएंगे, बताइए, आप ही बताइए।
क्योंकि वो वेदों के सिद्धांत के अनुसार भगवान को स्वीकार, भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते।
अनुकूल्य न है, ज्ञान कर्मादिनावृतम है, अन्याभिलाषिता शून्यम है, इसलिए हम उनको भक्ति, उसको भक्ति नहीं मान सकते हैं।
जैसे अनुकूल्य में कृष्ण उसमें आता है, तो फिर अब बुद्ध देव जो है उन्होंने जो कहा वो कर रहे हैं, तो फिर वो अनुकूल नहीं होगा।
और एक अच्छा प्रश्न है कि अनुकूल मतलब जो भगवान को प्रसन्न करे। अब बुद्ध हैं, अभी बुद्धदेव को प्रसन्न कर रहे हैं उनके आदेश का पालन करके, उनके उनका भाव भी ऐसा है, तो फिर भी कैसे है ये बताइए।
उनका उद्देश्य वेदों को फिर से स्थापित करना था।
बुद्धदेव का उद्देश्य ही था, सीमित था। बुद्धदेव का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना नहीं था, करवाना नहीं था। उनका उद्देश्य इस बात तक सीमित था कि लोग पशु हत्या बंद करें और उनको एक नैतिकता या मानवीयता के मार्ग पर लाएं। तो बुद्ध देव की पहुंच मतलब उनके अवतार का उद्देश्य केवल उतना ही था। परंतु जब कृष्ण आते हैं तो कृष्ण क्या कहते हैं भगवद गीता में, वो कहते हैं मैं तुम्हें ले जाऊंगा वापस वैकुंठ जगत में, यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परम मम। लेकिन बुद्ध देव ने ऐसे सिद्धांत का वर्णन नहीं किया। और वैसे भी बुद्ध देव जो है वो शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं, पूर्ण विष्णु नहीं है, विष्णु तत्व नहीं माने जाते। ठीक है, तो बुद्ध देव का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष करके प्रचार के दृष्टि से। तो आपको जान लेना चाहिए कि बुद्ध देव क्यों आए थे, क्यों प्रकट हुए थे। ये गलत जो वेदों के नाम पर जो पशु हत्या हो रही थी उसको बंद करने के लिए आए थे वो। इसलिए आखिरी लाइन में वही था ना, आखिरी लाइन फिर से पढ़िए तात्पर्य का, कि ये बुद्ध देव ने उनको क्या किया, युक्ति से अपने लाइन में लगा दिया जो नास्तिक लोग हैं।
भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को नास्तिकता का उपदेश दिया जिससे वे उनका अनुसरण करें और इस तरह भगवान बुद्ध या कृष्ण की भक्ति के चंगुल में आ
जाए। तो धीरे धीरे से ये प्रगति कर सकेंगे क्योंकि उनका जो सिद्धांत है वो बुद्ध देव ने दिया था। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हमें उस सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए, हमें तो सीधे ही बैक टू गॉड हेड जाना चाहिए, हमें ऐसे रास्ते से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज काफी लेट हो गया, क्षमा कीजिए, हम थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहते थे, ज्यादा कवर करना चाहते थे क्योंकि दिन अभी कम रह गए हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे।